चलिए जी, बताइए ऑनलाइन पे आवाज़ कैसी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, माशाल्लाह, बहुत नीट, बहुत अच्छा, शाबाश। जिन्होंने भी बनाया, नाम बताने जरूरी तो नहीं होते? अल्लाह ने तो किसी पत्ते के नीचे नहीं लिखा कि मेड बाय अल्लाह। हमारा दिल चाहता है कि हम लिखे हैं। ये एक यकीनन किसी यंग ग्रुप की है, इतनी फैंसी एक्टिविटी। बहरहाल, इसमें जो चीज़ मुझे समझ आ रही है ये, बल्कि हम लोग तो वहाँ यही करते हैं कि ब्रेक जब ख़त्म होती है तो नेक्स्ट, हम कल से हम ऐसे ही करेंगे। आप सब अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ रखा करें, ब्रेक के फ़ौरन बाद अपनी अपनी एक्टिविटी को खुद आप लोग डिस्कस करें, फिर आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आज मैंने आपको एक हेड स्टार्ट दे दिया। बहरहाल, इसमें जो बात मुझे भी समझ आ रही है कि ज़िंदगी में बहुत सारी रंगीनियाँ भी होती हैं, अल्कोहल, म्यूज़िक, एंगर वगैरह, और इंसान फिर भी ज़िंदगी में दुखी रहता है, लेकिन जब अल्लाह पर यकीन होता है तो फिर वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लेट डाउन नहीं होता। गुड। कुछ बच्चों की भी कंडीशन है, पहले बच्चे कैसे थे और आजकल हमारे बच्चे कैसे हैं, तो ये इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा खुद एक्सप्लेन करेंगी। इसके बाद ये एक एक्टिविटी आज के ऑटम के हिसाब से है, खूबसूरत है, अल जहीम और जन्नत, जन्नत और जहन्नुम का कंपेरिजन है कि जहन्नुम में क्या है और जन्नत में क्या है। मैं चाहूँगी कि आप खुद कौन है, किन्होंने बनाई ये एक्टिविटी, आपने बनाई है, क्या आपने बताना चाहे बेटा बताइए, जल्दी से वहीं से बोल दे, मैं रिपीट करती हूँ। किस रास्ते पे चलोगे, यानी एक तरफ शोले हैं और एक तरफ फूल है, तो किस पे चलोगे? अब ये हम सब अपने ऊपर रखेंगे। इरम, आप इनको पीछे लगा दें नोटिस बोर्ड पे। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, और बहुत खुशी है मुझे इससे, डजंट मैटर कि आपने एक्टिविटीज कैसी बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बनाई है, और आप देखेंगे कि इससे आपका अपना जहन बहुत खुलेगा। तो आप लोग यहाँ से आइडियाज़ लेके जाएं। मैंने आते जाते लोगों को तस्वीरें खींचते देखा है, ये पता नहीं अब क्या कल्चर शुरू हो गया कि हर चीज़ की तस्वीर, बस वो कई तस्वीरों में, फिर कोई नहीं खोल के देखता। अपने हाथ से लिखा करें, आप यहाँ की दीवारों से भी सीखें, कोई नोटिस बोर्ड पे चीज़ है, कोई कोटेशन है, उसको लिखा करें। जब आप लिखते हैं तो उससे इंशाल्लाह ताला आपके दिल में भी ये बातें आएंगी, कुछ चीज़ें जो आपके ही कमेंट्स हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी इखलास पे बात करके हम आज का पारा शुरू करेंगे। ये लिखती हैं कि आज एक नुक्ते ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया कि वाकई हम दुनिया में औलाद के लिए मालोजार इकट्ठा करने में मसरूफ रहते हैं, सर्दी गर्मी से बचाने और हर मुमकिन आराम और सुकून पहुंचाने की धुन में मगन रहते हैं, मगर आखिरत के इंजाम के बारे में औलाद की मंजिल कहाँ होगी कभी नहीं सोचते। हमारे प्यारे किस किस आजमाइश से दो चार होंगे, कैसे कैसे अजाब सहेंगे, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। इंशाल्लाह अजीज, आज से औलादों को दुनिया ही, औलादों की दुनिया ही नहीं, इनके दीन को संवारने और संभालने की नसीहत और वसीयत का अज़म करती हूँ, इस उम्मीद कामिल के साथ कि ये सिलसिला मेरी नस्ल दर नस्ल चलेगा, और रोज़े जज़ा हम ऐसे ही शाना बशाना रब्बे करीम के हजूर पेश होंगे जैसे इस फ़ानी दुनिया में एक ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं। अल्लाह पाक मुझे, सब साथियों को, हमारे तमाम रिश्ते नातों के साथ इसकी बारगाह में सुरख रुई इस अता फरमाए। इसके अलावा अमूमी तौर पर इस बारे में, खसूसी तौर पर जा बजा फ़िरका परस्ती के बारे में पढ़ने और सुनने से दिल में बेहद खलश और तकलीफ़ महसूस होती है कि काश उम्मत मुस्लिमा अपने औसाफ और अपने मुकाम को पहचाने, गैरों के आलाकार बनने और जिल्लत उठाने की बजाय अपने रब को राजी करने के असबाब करके दुनिया और आखरत की इज्जत और इकराम समेटें। गुड, अच्छी सोच है, और अच्छी सोच जो है वो कुरान पढ़ने से ही आती है। नबियों की तरबियत के अंदाज़ को मद्देनजर रखते हुए काश औलादों को तरबियत देने के अंदाज़ हमारे भी कम अज़ कम कुछ तो वही हो जाएं। जरूरत सोचों को बदलने की है, दुनिया को कम और आखिरत के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत वाजे फर्क महसूस होगा। तो सोच बदल गई तो सब शुरू हो गया। सोच ही असल में कहानी होती है जिसके साथ इंसान की जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां भी आती हैं और इंसान अपने हकीकत में बहुत ज्यादा हसास हो जाता है। अल्लाह ताला में कुरान और सुन्नत को सीखने सिखाने की हिकमत नसीब फरमाए और दीन इस्लाम के सच्चे रंग में रंगने की तौफीक नसीब फरमाए। रब को रब्बुल आलमीन मानना है, इसके हर हुक्म पर झुकने की कोशिश करनी है, आखिरत की कमाई की फिक्र दुनिया की कमाई से ज्यादा करनी है, नबियों को अपने लिए रोल मॉडल बनाना है और इनके नक्शे कदम पर चलने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी छुट्टियों के बाद एक बेचैनी थी जो आज इस कुर्सी पर बैठकर दूर हुई। सबकी बेचैन तो नहीं हुए? बहुत अच्छा लगा दोबारा क्लास में आकर, आज का सबक बहुत अच्छा था। दीन इस्लाम पर चलना है और अल्लाह का रंग हमारे जाहिर में जाहिर होना चाहिए। सच है, जाहिर में नहीं दिखेगा तो समझें कि वो रंग अंदर भी नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू क्लीन आवर सेल्फ, देन वी कैन कलर आवर सेल्फ इन इस्लामिक कलर। ऑनलाइन पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स थे, मैं कोशिश करूंगी एक बाद में अगर आप खोल दूं इधर तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ईमेल में भी चंद कमेंट्स थे और खुशी ही होती है कि आप तो यहाँ बैठ के सीखते हैं, और लेकिन जब ऑनलाइन वालों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे इसकी बड़ी खुशी होती है कि हमें ऐसे लगता है कि शायद वो उठते बैठते सुनते होंगे, लेकिन वाकई फोकस होके सुनते हैं तभी तो फिर इतना जज्ब करते हैं। आज मैं खुश थी कि आज माशाल्लाह एक पारा पढ़ लिया, और इसके बाद जैसे ही इसको समझना शुरू किया तो बहुत शर्मिंदगी भी हुई, क्योंकि साथ साथ अपने अंदर झांक रही थी कि मुझे बहुत सारे रंग उतार कर फेंकने हैं और अपने बच्चों में भी कोशिश करनी है कि उन पर इस्लाम का रंग चढ़ाऊं। या रब मेरी मदद फरमा। आज दिल एकदम धक से रह गया जब अपने हाथों से लिखा कि अगर मेरे बच्चों को अगले सफर पर जाते देखूं तो इनकी इसके लिए क्या तैयारी है। बहुत डर लगा और खुद से शर्मिंदगी भी हुई। या रब मुझे अपनी गलती सुधारने में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह हमें और हमारी औलाद को पूरे दीन वाला बना दे, यही फिक्र है हर वक्त, और ये कोशिश भी अल्लाह ताला बरकरार रखे। बहुत से रंग काट कर अल्लाह का रंग चढ़ाना है। हक बात करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। आज मैंने सीखा कि कैसे मुझे अपने आप को चेंज करना है, इन खामियों को कैसे एक एक करके रिप्लेस करना है। कोई एक सुन्नत नबी है ताकि अपने आने वाली नस्लों को कोई एक सुन्नत नबी से लेनी है ताकि अपने आने वाली नस्ल को बचा सकूं। प्रॉब्लम्स तो आएंगे इनके लिए, मगर वो बेहतर तरीके से इनको हैंडल कर सकेंगे। मैंने अपनी सलाह करनी है और भी ज्यादा ताकि अपनी औलाद को नेक और अपने दीन की तालीम दे सकूं। असल ये बात है, बच्चों की तरबियत का तरीका क्या है, अपनी तरबियत कर लें। आई हैव चेक माई सेल्फ एवरी डे, हाउ एम आई इंक्रीजिंग इन सिंसियरिटी। ये कहती है कि मैं अपने आप को चेक करती हूँ कि मेरे अंदर इखलास कितना बढ़ता जा रहा है, और लेसन क्या है कि एवरी डे इज लाइक अ ब्रेक, सो मेक श्योर इट इज प्लेस वेल एंड सिक्योर। हर दिन एक ईंट है, सही जगह पे रखेंगे तो इंशाल्लाह इमारत सही बनेगी। दुआ करती हूँ कि इस कोर्स के बाद मैं पूरी की पूरी सिबगतुल्लाह में रंग चुकी हूँ। कोर्स के बाद क्यों, कोर्स के साथ साथ ये रंग आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है। और अगर आप ये सोच के बैठेंगे ना कि कोर्स पूरा करके एक दफा रंग चढ़ाऊंगी तो फिर नहीं चढ़ता, वो कोटिंग होगी ऊपर और छिलके की तरह होती है। ये दुआ करें कि जैसे रंग कपड़े के अंदर आहिस्ता आहिस्ता धागों में जाता है ना, फिर वो नहीं उतरता। आपने कपड़ों में देखा होगा कुछ कपड़े प्रिंटेड होते हैं जो वीविंग के अंदर ही कलर्स लगते हैं, और कुछ ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं, प्लेन कपड़ा ले लेते हैं फिर उस पर ब्लॉकिंग करते हैं। आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि देखने में ब्लॉक प्रिंट्स खूबसूरत होते हैं लेकिन एक वॉश में ऊपर से छिलके बन के उतर जाते हैं। तो ये कुरान का अमल इल्म दुनिया दिल में हमारे कलर्स के अंदर लेके आना है, अंदर एक एक चीज डुबोएं अपने इस कुरान के अंदर, और उसका इलाज यही है। जिस दिन जो बात सुने उसमें खुद से कहें कि मैंने आज क्या सीखा। हर आयत को ये सोच के सुने कि ये दोबारा नहीं आनी। कुछ मौजू ऐसे हैं कुरान पाक में जो वाकई एक दफा आते हैं और कुछ रिपीट होते हैं। आप हर मौजू को ये सोच के सुने कि आज के बाद ये मौजू कभी नहीं आना, और अगर मैंने आज छुट्टी कर ली तो मेरा ये मौजू चला जाएगा। जैसे अब कल जो लोग नहीं थे या जिन्होंने नहीं सुना अभी तक, तो वो कितनी बड़ी नेमत से महरूम है अनलेस ये कि वो उसको सुन ना ले। तो हमेशा अपने आप को हिट पे रखा करें कि मैंने अपने आप को कभी रिलैक्स नहीं होने देना। आज का सबक माशाल्लाह बहुत अच्छा था। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अंदर रबूबियत का रंग भर दे। हमें सब कुछ रब्बानियत का लिखेगा, रबूबियत अल्लाह के लिए होती है, रब्बानियत का रंग भर दे ये लफ्ज़ है। हमें सबको फितरत के रंग से रंग दे और दूसरे रंगों से आजाद कर दे। आजाद तब ही होंगे जब कुरान और सुन्नत से अपने आप को जोड़े रखेंगे। फिरका वारियत से अपने आप को दूर रखना है इंशाल्लाह। मुझे अपने आप को, घर वालों, अपने भाई बहनों और सब मुसलमानों को साथ लेकर चलना है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे लिए आसानियों को पैदा कर दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बेशुमार कुर्बानियों के बारे में पढ़ और जानकर दिल में बहुत तब्दीली पैदा हो रही है और दिल में इंशाल्लाह इखलास ज़रूर पैदा होगा। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। अल्हम्दुलिल्लाह आजमाइशें तो बहुत आएंगी, दुआ है कि हमारी नस्लों की फलाह हो जाए, असल कामयाबी नसीब हो। ये वसीयत छोड़नी है इंशाल्लाह कि मरना है तो सिर्फ मुसलमान ही मरना है, नस्लों को इमाम की शख्सियत और अल्लाह के रंग में रंगना है। और जब अल्लाह ताला मदद करेगा तो फिर ये काम भी होगा और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस्तकामत मिल जाए। आज के सबक से ये सीखने को मिला कि हमें खुद को भी बदलना है और अपने साथ बच्चों को भी बदलना है और इनको दीन की राह में साथ लेकर चलना है। लेकिन उस्ताद जी, मुझे आपकी इस बात से, जो आपने कुरान की तफसीर बताई कि अपने बच्चों को नमाज के लिए उठाएं, और मुझे इस बात से बहुत शर्मिंदगी हुई कि मेरी 10 साल की बच्ची कह कह कर सोई कि मुझे फजर में उठाना, और मैंने इसके सोने की ज़्यादा फिक्र की और मैं इसमें मेरी ही कोताही है। हालांकि मैं रोज़ाना ही बच्चों से कहती हूँ कि अब तुम फजर अव्वल वक्त पर पढ़ोगे। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। और भी किसी को ये एहसास हुआ? हम खुद अपने बच्चों को थपक थपक के सुलाते हैं, कम से कम वो फिक्र नहीं रखते उनकी नमाज का जो उनके स्कूल और कॉलेज का रखते हैं। वजह क्या है कि स्कूल कॉलेज में भारी फीसें भी देते हैं और उसके पीछे एक कैरियर का बुत खड़ा हुआ है कि इनको डिग्री मिलनी है। लेकिन अगर दिन का आगाज ही नाफरमानी से हो जाए, सारा दिन फलाह के लिए भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं ना, बसों में, ट्रेनों में, रिक्शों में, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, तो हम उसमें नहीं आ पाते। अल्लाह ताला हमें हमारी इस्लाह कर दे। कई सालों से गंदे दिल साफ तो होंगे हमें गुनाहों से, जो कि माफ हमने हमें अपने दिलों को, कुछ सेंटेंसेस टूटे हुए होते हैं ना तो फिर पढ़ने मुश्किल लगते हैं। बहरहाल खुलासा क्या है कि दिल कई साल से गंदे हैं, अब साफ होंगे, और जो गुनाह माफ नहीं हुए अभी तक उनको माफ कराना है, अपना भी दिल साफ करना है और अल्लाह से भी इसकी दुआ करनी है। तो ये थे आपके कमेंट्स। चलिए सबक को खोलिए जरा। पिछला कल के सबक में, यानी इस सबक में हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक चीज दे, मैं चंद आयतों के नंबर बोल के फिर आपको उस पर गौर व फिक्र करवाऊंगी। देखिए कि आयत नंबर 136 है, वन्नहनु लहु मुस्लिमुन। और यहाँ थोड़ा सा एडिटिंग वालों के लिए बता दूं कि ये फाइल जो अब शुरू हो रही है, इसको एडिट करके कमेंट्स वाली फाइल से पहले लगा दें कि इन आयतों पर मजीद गौर व फिक्र। जी देखते हैं कि आयत 136 के आखिर में लफ्ज आया था वन्नहनु लहु मुस्लिमुन, हम इसके लिए मुस्लिम हैं। फिर आगे देखिएगा तो आयत 138 के एंड पे आया व नहनु लहु आबिदून, और हम उसके लिए इबादतकार हैं, इबादत करने वाले। और आयत 139 के एंड पे आया व नहनु लहु मुखलिसून, और हम उसके आगे मुखलिस हैं। ये असल में एक फितरी तरतीब है इंसान के अपने आप को बदलने की। होता क्या है कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है तो उसका नुक्ता आगाज तकवा से होता है। सूरत बकरा के शुरू में हमने पढ़ा था कि तकवा क्या है, कि एक इंसान को अपने आप को बदलने की फिक्र लग जाए। जब दिल में तकवा आता है ना, तो समझें कि आप उस पटरी पे चढ़ गए, आगाज हो गया सिबगतुल्लाह के चढ़ने का। सबसे पहले तड़प लगती है, अपने गुनाहों की फिक्र लग जाती है। आपने सूरत फातिहा से लेके इस पारे के अख्ताम तक अपने आप को चेक करना है कि मैं किस जगह पे पहुंची हूँ, और इसका आगाज बंदे के मुस्लिम होने से होता है। मुस्लिम किसको कहते हैं? बगैर सोचे समझे जो उसको कहा जाए उसको कर दे, दैट्स इट, मान लिया, कर दिया। बात समझ आए कि ना आए? आज के सबक में इंशाल्लाह, अगले सबक में हम देखेंगे कि कैसे किबले की तब्दीली की हिकमत समझ आई कि नहीं आई। सहाबा मुड़ गए, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको रोल मॉडल बना दिया। तो जब इंसान की जिंदगी में ये मुकाम आए तो उसको पहले स्टेप पे अल्लाह की बात माननी है। मैं आपको और अपने आप को मिसाल दूंगी कि जैसे हमें कहा गया कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हिकमत समझ आए कि ना आए, पढ़नी शुरू कर दें। जो ही आपने नमाज पढ़ी वक्त पे, आप मुस्लिम बन गए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई उसमें फोकस हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे? नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों को शैतान सिर्फ इस वजह से नमाजों से दूर रखता है, कहता है फायदा क्या नमाज पढ़ने का, मेरा दिल तो लगता ही नहीं है, कुछ समझ तो आता ही कोई नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सरसाइज है, सिर्फ ये तो टक्कर है, मारिए जब आप फर्ज समझते हुए नमाज पढ़ने लग गए तो आप मुस्लिम के स्टेप पे आ गए, आप सीढ़ियां बनाए। तकवा क्या था जिसने आपको इस सीढ़ी के करीब किया कि मुझे अल्लाह की बात माननी है। इसीलिए शुरू में पारे के कह दिया हुदा लिल मुत्तकीन। अब आप सब इस वक्त जो कुरान के सफर में, आप सब मुत्तकी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सर्टिफिकेट डिग्री आपको तकवा के नाम की कभी भी नहीं कोई देगा, लेकिन आप मुत्तकी सुरंग से बन गए क्योंकि आपने खुद को बदलने का इरादा कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो बात जो हुक्म जहां आए उसको मानते जाइए। कुरान में एक आयत आ गई अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की, 50 पेंस, 1 पाउंड, 1 डॉलर, 1 पैनी जो है उसको अल्लाह के रास्ते में डाल दीजिए। ये आपका मुस्लिम बनने का सफर होगा। आपको जिस दिन जो बात लगता है कि इस पे मेरे अमल में कमी है, उसको अमल कीजिए, आप करते जाएं। इसी तरह नमाजों में अमल हो गया मुखले। इसके बाद ऐसा ऐसा क्या होता है कि आप आबेदून के दर्जे पे कैसे आते हैं कि फिर आपको नमाज में मजा आने लगता है। शुरू में आपकी नमाज खोखली टकरे क्यों ना हो, फिर भी पढ़िए। शैतान बहुत जगह लोगों को इस तरह मात खरवा देता है, खा देते हैं लोग, बहुत सारे लोग शैतान की इन बातों से मात खा जाते हैं कि तब पढ़ेंगे जब मजा आएगा, जब फोकस होंगे, अभी मजा नहीं आ रहा। वो कभी नहीं पढ़ते। आहिस्ता आहिस्ता इबादत का एक रंग होता है कि बंदे का दिल फिर उसमें जमने लगता है। जब दिल जमेगा तो समझ लीजिए कि आप दूसरे स्टेप पे पहुंच गए। जब इबादत पुख्ता होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इखलास आता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दीन के कुछ अहकामात पूछे थे। सुनाना था मकसूद, तालीम तालीम देना मकसूद था, लेकिन सवालिया अंदाज में। तो उसमें बहुत सारी चीजें, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तो उसमें आखिरी चीज पूछी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि एहसान क्या है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इस तरह से इबादत करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, कान्नक तराहू। जब इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो ये महसूस करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम अपने इंटरलेक्ट को, अपने ख्याल को, तखय्युल को उस हद तक ना भी ले जा सको, तो फिर कम अज कम ये जरूर सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और ये है एहसान। तकवा का आला तरीन मुकाम एहसान का मुकाम होता है, और ये मुकाम बंदे को जब मिल जाता है ना, तो बंदे के अंदर इखलास पैदा हो जाता है। फिर वो सिबगत अल्लाह की ये शेड्स हैं, मुस्लिम लाइट है, बिल्कुल लाइट ग्रे कह ले, आबेदून में आएंगे तो डार्क ग्रे, और आप उसके बाद आबेदून से होते होते मुखलिसून पे जब पहुंचेंगे तो आप अल्लाह के रंग में रंग के स्याह हो चुके होंगे। स्याही से मुराद जहां काला रंग नहीं है, बल्कि स्याही से मुराद के अनमिट किस्म का रंग होगा। इस तरह से फिर आप अपनी इबादत की हिफाजत करेंगे। आप देखिए कि दुनिया में कोई चीज वजन बढ़ने से खूबसूरत नहीं होती। मसलन अगर हम कहें कि हम खूबसूरत होना चाहते हैं, हमारा वजन बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं, बल्कि इसका अपोजिट ही लोग सोचते हैं। इसी तरह हमारी नेकियों की क्वांटिटी बढ़ जाए, इसमें इखलास नहीं है, ये भी समझिएगा। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा हम लोगों के कहने पे एक एक वजीफा लाखों बार पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा कई कई सौ सौ नफिल पढ़ते हैं। क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी क्या रही, गिनती पे रह गए, एक दफ़ा गिना के दो दफ़ा गिना। हमारे अंदर खूबसूरती इबादत की क्या आएगी कि हम इबादत को उसके वक्त पे करें, उसके अंदर उसकी रूह को लेके चलें, उसकी जगह जहां पे हम इबादत करते हैं वहां बैठ के वाकई महसूस हो कि अल्लाह सुबहाना ताला का कुर्ब मिल रहा है। कैफियत, हैयत, तरीका, जिन्स, इस तरह से इंसान का ये मामला चलता जाए कि वो वाकई मुखलिस बन जाए। और पता कैसे चलता है कि मैं मुखलिस हो रहा हूँ, तो फिर उसके लिए हमें इखलास के बारे में पता होना चाहिए। चंद कोटेशंस आपको इखलास के बारे में बताऊंगी जो मुख्तलिफ डिक्शनरियों से जमा की गई हैं। इमाम राग़िब इस्फ़हानी हैं, बहुत बड़े डिक्शनरी होल्डर कह लीजिए अरबी जुबान के नाते से, कहते हैं कि खालिस का मानी है साफ, जिस चीज में मिलावट हो वो मिलावट दूर कर दी जाए, तो इसको खालिस कहते हैं। सोचिए आप अब अपने ऊपर ले रहे हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारी मिलावटें थी, आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको अलग कर दिया तो हम पाक हो गए। लेकिन जिस चीज में मिलावट ना भी हो, इसको भी खालिस कहते हैं। कुरान पाक में मुसलमानों को मुखलिस फरमाया गया क्योंकि वो यहूद की तशबीह और नसारा की तसलीस, तशबीह कहते हैं सिमिलैरिटी को और तसलीस कहते हैं ट्रिनिटी को, इससे बरी हैं। और इखलास की हकीकत है कि अल्लाह के सिवा हर चीज से बरी होना। बात वाज़े, मुखलिस कौन है? जिसमें ट्रिनिटी के जज्बे ना हो, जिसमें क्रिश्चियन ज्यूज के साथ अपने आप को असिमिलेट करने की ख्वाहिशात ना हो, और जिसमें जो गुनाहों की गंदगी आलाइश है उसको दूर कर दिया जाए। खुलासा क्या है कि जिस इबादत में रियाकारी की बिल्कुल आमेजिश ना हो, इसको इखलास कहते हैं। इसी तरह अलामा कुर्तुबी, आप अगर रिफर अरबी तफसीरें देखें तो इनका नाम बहुत मानूस है आपके लिए, ये लिखते हैं कि अमल को मखलूक के मुलाहजे से साफ कर लेना इखलास है। यानी आप कोई नेक, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं। यकीन करें कि हम अपनी इबादात को अगर परख के देखें ना, तो तन्हाई में पढ़ी हुई नमाज और जमात में पढ़ी हुई नमाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत दफ़ा मैं महसूस करती हूँ कि जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं किसी मस्जिद में किसी इमाम के पीछे, या पहली दो रकतें जिसमें ऊंची किरत होती है, इतनी लंबी खुशू और खुदू वाली, जो ही तीसरी रकत पे हम आते हैं जिसमें कोई सुनी नहीं रहा होता, इमाम साहब भी दिल में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बस मुश्किल सूरत फातिहा भी उनके पीछे पूरी होती है। हम किसी पे बदगुमानी नहीं करते, लेकिन आप ये खुद से महसूस करें, कोई नेकी का अमल जो मैं कर रही हूँ, क्या लोग उसको देख रहे हैं इस जज्बे के साथ कर रही हूँ या इससे पाक हूँ। अगर आप पाक हैं तो आप मुखलिस बन जाएंगे इंशाल्लाह। जुनेद बगदादी एक बुजुर्ग थे, कहते हैं इखलास अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, ना इसको फरिश्ते जानते हैं कि लिख सके, और ना इसको शैतान जानता है कि इसको फासिद कर सके, और ना इसको ख्वाहिश जानती है कि इसको किसी की तरफ माइल कर सके। यानी एक सीक्रेट है। आप इस वक्त जहाँ पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मुखलिस व इखलास के साथ पढ़ा रही हूँ, या मेरे पीछे कुछ और अजायम हैं जो आपको नहीं दिख रहे, हिडन कोई मेरे मकासद हैं, या आप किसी डिग्री या किसी कागज़ के शौक में आ रहे हैं? ना मैं आपके जानती हूँ, ना आप मेरे, ना फरिश्ते जानते हैं, ना शैतान जानते हैं। यानी ये एक अल्लाह का बंदे के साथ राज है। इसी तरह अबुल कासिम कशीरी हैं, ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी, आपने जिब्राइल से पूछा कि इखलास क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने रब्बुल इज्जत से इखलास के बारे में पूछा, तो फरमाया कि वो मेरा एक रास है जिसको मैंने अपने महबूब बंदे के दिल में रखा है। अल जामे अल अहकाम अल कुरान अरबी की तफसीर है, उसमें ये बात आप पढ़ सकते हैं। यानी बंदे और रब का मामला, मत जजमेंटल हो, फलां बड़ा गुनाहगार है, फलां जहन्नमी है, फलां काफिर है, फलां मुनाफिक है, और ना किसी को देख के ये तो जी पक्के जन्नती, ये जी हाजी साहब, ये नमाजी साहब, मत करें ऐसा। अल्लाह के नबी के सामने एक शख्स शहीद हो रहा था और लोगों ने कहा जिसने जन्नती को देखना है तो देख ले, तो अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, तुम नहीं जानते, लेकिन इसने माले गनीमत में से एक चादर चुराई थी जिसके ऊपर आग की बना के उड़ा दी गई। ये जो मरने वाले के साथ बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज लगाते ना, मरहूमो मगफूर, सही नहीं है? मरहूम रहम किया गया, मगफूर जिसकी बख्शिश की गई। हम दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाहुम्मरहमहुम वगफिर लहुम, कि अल्लाह इस पर रहम कर, इसको बख्श दे, ये फतवा नहीं दे सकते कि ये बख्शा गया। ये तो फिर नबी और पैगंबर ही किसी के बारे में कह दे तो वो हुज्जत है। इसलिए लोगों पे बहुत ज्यादा कमेंट ना दें, फिक्र अपनी कर लीजिए कि मेरे साथ क्या है। इसी तरह सईद बिन जुबैर हैं, कहते हैं इखलास ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए और अपना अमल किसी को दिखाया ना जाए। फुजैल बिन अय्यास कहते हैं कि लोगों की वजह से अमल को तर्क कर देना रिया है और लोगों की वजह से अमल करना शिर्क है। नोट करें फर्क, कोई काम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो शिर्क है, और लोगों की वजह से हम क्या छोड़ देते हैं, लो अब मैं यहां नमाज पढ़ूं, अब मैं सर पे दुपट्टा लूं, लोग देख रहे हैं, अकेले में करूंगी, ये शिर्क है और वो रिया है। इखलास ये है कि अल्लाह तुम्हें इन दोनों से महफूज रखे। इब्ने माज कहते हैं कि इखलास ये है कि जिस तरह दूध को गोबर और खून के दरमियान से निकाला जाता है, इसी तरह अमल सवाले को गुनाहों से पाक किया जाए। यानी नेकियां करने के बाद कोई चैन से बंदा थोड़ी बैठता है। ये तो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे कि तकवा ऐसे ही है जैसे आपका दौलत है, दुनिया की दौलत बढ़ती है ना तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है। पहले हम मोटी लॉन में भी खुश थे, अब हमें पतली लॉन में भी गर्मी लगती है क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ गया है। ब्रांडेड नेमों से नीचे पहनते कुछ नहीं, खाते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। इसी तरह जब तकवा बढ़ता है ना इंसान का, तो शुरू में इंसान को छोटी छोटी नेकियां भी बहुत बड़ी लगती हैं। शुक्र है नमाज तो पढ़ती हूँ ना, शुक्र है गले में तो दुपट्टा लिया हुआ है ना, दूसरों से तो अच्छी हूँ ना, इस पर वो बड़ा अमीर बनता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इखलास आता है तो बंदे को अपनी बड़ी बड़ी नेकियां छोटी लगती हैं। लो पांच नमाजें ये तो सब पढ़ते हैं,
लो ताजुद कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब पढ़ते हैं। फिर बंदा कोई एक ऐसी ब्रांडेड नेकी करना चाहता है जो किसी ने नहीं की, और उसका इख्तिताम कुर्बानियों पे होता है। नहीं, कुर्बानी करनी, एक वक्त है बंदा जान बचा रहा होता है, हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मुझसे कुछ कोई मांग ना ले, और एक वक्त है कि बंदा हाथ में चीजें लिए फिरता है कि अल्लाह कोई मौका बना, मैं ये सब तेरे रास्ते में दे दूं। अक्सर कभी कभी ऐसे ही फीलिंग्स आपके साथ भी आते होंगे कि जैसे दिल में ख्वाहिश होती है अल्लाह कोई मौका दिखा, मैं सब कुछ अपना दूं, एक दफा दूं अबू बकर की तरह, मैं पूरा घर दे दूं तेरे रास्ते में, फिर तू नया दे देगा। ये कैफियत बंदे के अंदर जब उठती है ना, तो आप समझे कि अल्लाह सुबहाना ताला उसको मुखलिस बना रहा है, पाक कर रहा है, डिटर्जेंट लग रहे हैं। जैसे आप पहले कपड़े को धब्बे से पानी से धोते हैं, ना उतरे तो साबुन से धोते हैं, फिर ब्लीच डालते हैं, फिर आप उसको भट्टी में पकाते हैं। ये सिवात अल्लाह का रंग चढ़ाना और इखलास का रंग लेके आना, ये बंदे को बहुत बड़ी कुर्बानियों से गुजारता है। ये बातें आम जगहों पे बैठ के करने से समझ ही नहीं आती जब तक कि अमल के मैदान में इसको ना किया जाए। फिर इसी तरह अबू शेखी है, कहते हैं कि इखलास ये है कि इस अमल को ना फरिश्ते लिख पाए, ना शैतान फासिद कर सके, ना किसी इंसान को इसकी इत्तला हो, यानी अल्लाह के सिवा किसी को बंदे की नेकी की इत्तला ना हो। आपको पता है कि हमारे सहाबा कराम जंग के मैदान में जब निकलते थे ना, तो इस डर से कि लोगों में हमारी वाहवा ना हो, मुंह पे कपड़े डाल लेते थे, निकाब करके जाते थे कि हमारी रियाकारी ना हो। अल्लाह ताला ने उनकी वही बात लोगों में खोल के और ज्यादा उनको इज्जत दे दी। तो क्या पता चला, जितनी छुपा के नेकियां करेंगे ना, अल्लाह आपको उतना ज्यादा इज्जत और मर्तबा देगा। और जितनी दूसरों को हमारा हाल क्या होता है, बस तहज्जुद शुरू कर दी है, बस सब तस्बीह हाथ में रहती है, अब तो मैं बड़ी नेक हो गई हूँ, अब तो कुरान मेरे हाथ से उठता नहीं। मत चर्चे करें, मत अपने इस कोर्स के भी तस्करे दावतों में और शादियों में बैठ के करें। आप तो बार दफा मोहब्बत में सादगी की वजह से लोगों को सुना रहे होते हैं ना, हम बड़ा पढ़ते हैं और हर वक्त कुरान पढ़ते हैं, वो कई उस महफिल में आके बैठे होते हैं जो सोच रहे होते हैं हम भी चले, वो आपकी इन बातों से रुक जाते हैं कि हाय हाय इतना पढ़ना पड़ता है, अभी उन्होंने चखी नहीं तो उनको मजा कहाँ से आएगा। तो हमेशा अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत और कॉल सामने आ गया, अबू याकूब है, कहते हैं इखलास ये है कि बंदा अपनी नेकियों को इस तरह छुपाए जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है। सच है कि नहीं? और आपको पता है कि फिस्क क्या होता है, कि बंदा गुनाहों को ऐसे जाहिर करता है जैसे लोग नेकियों को करते हैं, उनको गुनाह करके और ज्यादा मजा आता है। इसी तरह हुज़ैफ़ा मरशी एक शख्स है, वो कहते हैं कि बंदे के अफ़ाल का जाहिर और बातिन में बराबर होना इखलास है। सहल कहते हैं कि अपने अमल को हकीर जानना इखलास है। ये तो नोट कर सकते हैं ना, जो भी अमल नेकी का करेंगे, ये भी छोटा है अभी, ये छोटा है अभी, मैंने अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं किया। और ये की पॉइंट बना ले अपने अमली जिंदगी का, अपनी हर नेकी को छोटा जानना है। अबू सुलेमान अद-दुरानी कहते हैं, ये आप नोट कीजिएगा, कहते हैं कि रियाकार की 3 अलामतें हैं, क्योंकि आप फिक्र लग रही है ना कि कहीं हम रियाकार तो नहीं है, किया धरा हाथ में ना पड़ जाए। तो 3 अलामतें अपने लिए, 3 टिप्स बना के इसको अपने लिए रख लीजिए कि कहीं मेरे अंदर तो ये नहीं। जब वो अकेला हो तो इबादत से थक जाता है, और जब लोगों के दरमियान हो तो तरोताजा हो जाता है। कितना सख्त क्राइटेरियन है। और दूसरा, जब इसकी तारीफ की जाए तो नेक अमल ज्यादा करता है, यानी तारीफें करते जाओ काम करा लो, जहां आपने अप्रिशिएट करना छोड़ा, वो कहते हैं हमें तो कोई एडमिट ही नहीं करता, कोई एडमायर ही नहीं करता, हमारी तरफ तो जी अब तवज्जो नहीं, नाम तो बस दूसरों के ही लेते रहते हैं, हम तो पीछे ही पड़ गए हैं अब। तो समझ लीजिए कि अभी इखलास नहीं आया। और तीसरी बात क्या है कि इखलास रिया के बिलमुकाबिल है। मतलब अगर आप इन 3 चीजों को इस तरह भी ब्रेक कर लें कि अकेला हो तो इबादत से थक जाए, दूसरों के बीच में हो तो तरोताजा हो, और तीसरी चीज है कि तारीफ की जाए तो नेक अमल ज्यादा करता है, तो आप देखिए कि ये चंद चीजें हम सब के शऊर के लिए थी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सिबगत अल्लाह में रंग दें। इस तरह से अल्लाह के रंग को चढ़ाइए, कभी ना उतर सके, और इस तरह से आप खूबसूरत हो, पक्के रंग, कच्चे नहीं। बाहर आप देखिए कच्चे रंग खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन ये रंग ज्यादा देर नहीं चढ़ते। ये जो इल्म का सफर है ना मेरा और आपका, आज के सबक, अगले सबक में भी हम पढ़ेंगे तस्किया के अंदर, बिल्कुल एंड पे बात होगी इस पे, लेकिन यहाँ ही समझ लीजिए कि ये जो तरबियत के मराहल में डांट डपट होती है ना, रूल्स होते हैं, सख्ती होती है, ये बिल्कुल उस भट्टी के गर्म पानी की तरह होती है जिसके बाद रंग पक्का होता है। जिस इंसान को किसी उस्ताद के हाथ लग जाते हैं ना, उसका तज़किया हो जाता है और फिर वो सिबगत अल्लाह में आ जाता है और फिर वो दूसरों को देखकर गिरगट की तरह रंग नहीं बदलता। कुछ लोग इस सख्ती से घबरा जाते हैं, जैसा देश वैसा। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की, ये कच्चे रंग है, मौसम के साथ बदलते, मौसम के साथ रंग नहीं बदलने। हमने इंशाल्लाह लोगों की तारीफ और तनकीद से बेनियाज होकर अल्लाह के काम करने हैं, और कपड़ा जितना मजबूत होगा ना उतनी सख्ती बर्दाश्त कर लेगा। अगर मेरे अंदर का ईमान का कपड़ा इतना पुख्ता ना, तो मेरी परवाह भी नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, वरना लोग एक कमेंट देंगे, आप अपना हुलिया बदल के आ जाएंगे कि जी लोगों की बातें हमसे नहीं सुनी जाती, और इस तरह से ये बात होती है। सवाल आखिरी उठाकर अगले सबक पे चलते हैं, और वो क्या कि आज अल्लाह का रंग हमें क्यों नहीं दिखता, वजह क्या है? कुछ तो है इनफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे उम्मत मुस्लिमा को रंग क्यों नहीं मिलते? तो पहली बात यह कि असल इस्लाम हमने देखा ही नहीं है। पूरा रंग चढ़ाने के लिए पूरा दीन भी तो चाहिए। आज हम जवाल के दौर में हैं, हमने वो दौरे फारूकी नहीं देखा कि लोग माल लेके फिरते थे कि अल्लाह के बंदो ले लो, माल लेने वाला कोई नहीं था, लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ के नमाजों के लिए उठ जाते थे। वो एक सजदा उनको दुनिया रात दीन और दुनिया की हर चीज से प्यारा होता था। चूंकि हमने देखा ही नहीं, हमें इसलिए पता ही नहीं। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है कि दूसरे गैर रंग जो वो बड़े नुमाया, पंप एंड शोक, ग्लैमरस, और शिर्क और कुफर का रंग बहुत खूबसूरत होता है। इतने पक्के चढ़े हुए रंग होते हैं बाज दफा कि अल्लाह का दीन पूरा कुरान पढ़ने के बाद भी रंग नहीं आता। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इस सारी चीजों के एंड पे आपके पास है, वो क्या है कि इल्म जो आप पर मैं इस वक्त अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से ले रहे हैं ना, इस इल्म के पानी को आपने जब अपने दिल में डालना है ना, तो इसके साथ आप फील करेंगे कि आपके अंदर आजजी का रंग आएगा। बस लोग इल्म हासिल करके तकब्बुर में चले जाते हैं, और ही सख्त होती हैं गर्दनें। हम बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े हुए हैं, उनकी बात के अंदर एक रौनत है। बड़े जो नेकी की बात होगी उनको लगेगा ये हमारे अंदर है, और जो गुनाह की बात होगी वो दूसरे अंदर है। नुकसान क्या होता है कि फिर उसके बाद वो इल्म के पहाड़ तो बन जाते हैं, लोगों की नजरों में वाह वाह तो हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में उनका मुकाम न जाने क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इस तरह दिल खुल जाता है कि इंसान की जिंदगी में फिर बाकी सब चीजें पीछे हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई बात था आपके जहन में, सवाल कुछ पूछना चाहें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। जी आप प्लीज। जी ये अब सब कुछ सूरत आले इमरान के पहले लेसन में आपको पता चलेगा, बहुत डिटेल से सूरत आले इमरान के पहले सबक में तौरात और इंजील की हिस्ट्री होगी इंशाल्लाह। जिस तरह हमने सूरत अल बकरा में ज्यूस की बहुत हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो सूरत आले इमरान में आप क्रिश्चियंस की पढ़ेंगे, ठीक है? वहां तक रोक लेते हैं। चलिए सब मिलके सबक की पहली तीन आयात को मिलके पढ़ें। आउज़ु बिल्लाह पढ़ती हूँ और आप सब एक साथ शुरू करेंगे, और जी नहीं ये तिलावत करें ना, बिन की तिलावत ज्यादा सुननी है मुझे। जी शुरू कीजिए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
आप लोग बताइए कि माशाल्लाह एक छोटा सरी क्या हुआ, हमें क्या बूस्ट मिला, क्या चीज़ आप लोगों ने फील करी, जल्दी से शेयर करें इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, मीन वेल इंशाल्लाह उस्ताज़ रेडी हो जाएंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ ऐसे है तो हम फिर तफसील ही को कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलहमदिल्ला हो सकता है उस्ताज़ के साथ कुछ उनके कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से थोड़ा सा रिकैप करते हैं, अल्लाह ताला आसान करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने लिखा है यहाँ पर कि इखलास के ऊपर एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी, क्या अब हमें फील होता है कि हमारे अमाल के अंदर इखलास कितनी अहमियत है, कितना ज़्यादा एक इंटेंशन की चेक रखने की ज़रूरत है। और जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो वाकई फिर ऐसा फील होता है ना कि वाकई में ये जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जानी चेंज करने की तरह। बिल्कुल इंशाल्लाह उस्ताद साहब, मैं माइक छोड़ती हूँ, आप प्लीज लीजिए। प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारा फॉल्ट ऑफ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये है कि जैसे ही कोई होगा अरेंजमेंट रखे इंशाल्लाह वीजा के ऊपर आसानी से वो ले सकते हैं। उस्ताद साहब कोई वॉइस नहीं आ रही आपको, तो इंशाल्लाह हम वेट करते हैं ताज़ा का कि जिस तरीके से भी वो करें इंशाल्लाह। मीन वाइल हम लोग अपना थोड़ा सा रिकैप कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को यही लिख रही थी ना कि समटाइम्स मुझे हमेशा बल्कि यही फील होता है कि जब किसी अच्छी चीज़ से मैं रुकती हूँ मुझे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला स्टॉप कर, अल्लाह ताला ने उस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ रखी है मेरे लिए और शैतान एक हर्डल डाल रहा है उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन बहुत खूबसूरत है, वो नहीं चाहता कि हम जल्दी इसको सीख लें जी। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह उस्ताद आप माइक लीजिए प्लीज, पर हमें ज्वाइन करेंगी तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक हमने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो आप लोग जरूर यहाँ पर डिस्कशन करें इंशाल्लाह ताला। ठीक, कल का हमने जो पूरा लेसन पढ़ा था, चूंकि इट्स द लास्ट, आप कह लें कि एंडिंग वर्ड होते हैं और हर पारे के जो आखिर के लफ्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी उनका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सारी आयात के ऊपर। तो हमने एक और मैसेज ये भी देखा ना कि अल्लाह ताला ने बताया कि वो एक उम्मत थी और ये कुछ ग्रोह थे जो गुजर गए, और हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक जजा दिया जाएगा और हर कोई उसी के बगैर। क्या हमें कोई ऐसी फीलिंग आती है जी, कैसी फीलिंग आती है बताएं, उनके लिए जो उन्होंने कमाया, और फिर उसके साथ साथ ये भी देखें कि और हमारे लिए जो हमने कमाया, और हम ये भी देखें कि अगर हम कोई काम नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला की जात पर, यानी आगे और लोग आते चले जाएंगे, अल्लाह के लिए जो भी काम करेंगे वो खुद फायदा उठाएंगे। अगर हम नहीं करते या हम इस चीज में ज्यादा मेहनत नहीं करते तो इसमें नुकसान हमारा अपना है। फिर हमने ये भी देखा था कल के लेसन में कि अपनी औलाद के लिए क्या चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, अपनी औलाद के लिए किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है ये बताएं। हमको किसी खुशफहमी में नहीं रहना, फेवरेट पार्ट्स स्पेशली हजरत याकूब अलैहिस्सलाम विल यू फॉलो, हर एक अपने आप के लिए जवाब बेहदीन पर फोकस करना, यू कैन रिलाय ऑन अदर्स, वी हैव टू अर्न आवर ओन रिवार्ड्स। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, बिल्कुल मैं यहाँ पे माइक इंशाल्लाह छोड़ती हूँ। सिस्टर शाहीन आप माइक लीजिए प्लीज, लेट्स स्टार्ट। आई वाज लाइक यू शेख ऑनर जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
मार कुटाई और गुस्से में मुसलमान काफिरों से भी लड़ते हैं और मुसलमानों से भी लड़ते हैं, फिरकों के नाम पे भी लड़ते हैं। जिनके पास हक है वो हक होने के बावजूद हक का इजहार ठीक तरह नहीं करते। नतीजा क्या आता है कि जो ही कोई एक शख्स बात करना शुरू करता है तो दूसरे लोगों के खिलाफ बात शुरू करता है। तो अल्लाह के नबी को यहाँ बताया गया, हाँ 16-17 महीने के दौरान क्या हुआ कि नंबर एक लोगों ने आपको इतना ज्यादा सोचना छोड़ दिया। सही बात है कि यूज्ड हो गए, नई चीज होती है तो हर तरफ शोर मचता है ना, ये होने लगा वो हो रहा है वहां ये हो रहा है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा कोई कॉन्शियस होगा। कुछ दिन महीने हफ्ते खत्म होते हैं तो उसके बाद लोग सब एवरीथिंग जिसको कहना चाहिए कि नॉर्मल, जब ये मामला भी हो गया दूसरी तरफ मुसलमानों के पांव जम गए, उनके साथ कुछ ऐसे हम ख्याल लोग आ गए और उस वक्त महसूस ये हुआ कि अब तब्दीली का वक्त आ गया। अभी तो 16-17 हफ्ते थे, महीने थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरी तौर पे मक्का से प्यार करते थे। आप और मैं भी तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं ना, चाहे उसकी सड़कें टूटी हुई हैं। हम दुनिया में चांद पर भी पहुंच जाएंगे तो हम छुट्टियां मनाने पाकिस्तान के किसी शहर या गांव में जाएंगे ना, ये फितरी बात है। तो मक्का वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जाए विलादत थी, दूसरा अल्लाह का घर, तीसरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं थी कि अल्लाह ताला लोगों के दिल इस तरह। तो अल्लाह के नबी खुश नहीं थे। अब यहां से आपको मुकाम समझ आएगा, नबी की मर्जी के खिलाफ, नबी की चॉइस के खिलाफ 1.5 साल तक अल्लाह ताला ने नबी की इबादत बैतुल मकदस की तरफ करवाई। की कि ना की आपने? शोर मचाया, चूचा की, कोई अल्लाह के नबी ने धौंस दी, धांधली दी, जिसको आज नातों की सूरत में आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद अल्लाह, और अल्लाह के कहने से क्या होता है, जो चाहता है वो नबी करता है। नहीं, ये था अल्लाह के नबी की बात जो अल्लाह ताला खुद कहे कि आमन और रसूल, रसूल तो खुद सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि के हुक्म को मानता है। आप दिल की मिलान के खिलाफ होने के बावजूद नमाज बैतुल मकदस की तरफ पढ़ते रहे। अब नतीजा क्या हुआ कि वो वक्त आप पर दिल करता था कि आप आसमान की तरफ देखते थे, दुआ करते थे दिल से थी आपकी कि दोबारा बैतुल्ला की तरफ किबला हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक एंगल पे और चलिए, वो क्या है कि बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना उस दौर के लोगों के लिए मदीना में रहते हुए बहुत आसान था। बाप दादा के तरीके से, वक्त से वो यही देखते आ रहे थे यहूद की वजह से। जब उनको बैतुल्ला की तरफ अब हुक्म हो रहा है तो अब उनके अंदर एक किस्म का वही एक मलाल और शक पैदा होगा कि हम अपने बाप दादा के तरीकों को छोड़कर अब इस नबी के कहने पे एक और तरीके पे क्यों नमाज पढ़ने लग गए। ये बिल्कुल वही चेंज है जो कुरान पढ़ने के बाद अक्सर लोगों की जिंदगी में आता है। हम सब एक खास पेट दीन पे चल रहे होते हैं बचपन से, नमाज पढ़ने से लेकर वजू करने से लेकर शादी ब्याह के रस्मों पे। जब कोई कुरान पढ़ने आता है ना तो सबसे पहली यही तब्दीलियां लोगों को चुभती हैं। क्या हमारे बड़े गलत थे? क्या उनको समझ नहीं थी? क्या फिर इसका मतलब है ये भी ठीक नहीं तो वो भी ठीक नहीं? जब ये मौका आता है ना इंसान के जहन में तो दो किस्म के गिरोह बन जाते हैं। एक खास मजहबी जहनीयत के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जाहरी बातों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मसलन जिसको आज के दले फी जमाना के नमाज में हाथ कहाँ बांधे, नमाज में रफुल यदैन करें कि ना करें, पांव जोड़ें कि ना जोड़ें, औरत ऊंचा सजदा करे कि नीचा करे, ये पेट जुमले आपने सुने होंगे। इमाम के पे फातिहा ऊंची आवाज से पढ़ी जाए कि नीची पढ़ी जाए, ये जाहरी अमाल है जिनकी बहुत अहमियत है, लेकिन ये असल नहीं है। जब लोग खास तौर पे इस सोच के हामिल हो जाएं कि इबादत के जाहरी पे इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई किबले का इधर की बजाय जरा सा इधर मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू हो जाए ना तो सारे शोर मचा देंगे, हाँ ये किबला ठीक नहीं, ये नहीं पढ़ा, तुम्हारी हुई नहीं, कोई कहता है दोहराओ, कोई कहता है कफारा दो। लेकिन इसके बरक्स जो आमाल की रूह है वो खाली होती है। नमाज में
कनेक्शन अल्लाह से
कनेक्शन जुड़ा
है।
कि नहीं जुड़ा, हू केयर, कितना खशियत आई, कितना इखलास आया, कितना सिबगत अल्लाह आया, ये उनको नहीं पता होता। नतीजा क्या होता है कि फिर दीन जाहरी रस्मों का एक मजमुआ बन जाता है। जब कोई दिन आया लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, हज जाता है तो हज कर आते हैं, रमजान आता है तो रमजान रख लेते हैं, लेकिन उस इबादत का जो अंदर तबीयत पे असर आना चाहिए ना वो नहीं आता। अल्लाह ताला किबले की तब्दीली के जरिए ये सोच खत्म करना चाहते थे। मक्का से जो लोग हिजरत करके आए थे, अब ये इसी के साथ एक डिफरेंट एंगल है, मक्का से हिजरत की सहाबाए कराम ने, कौन सी हिजरत थी? जिस्मानी हिजरत थी ना, घर छोड़ छोड़े, माल छोड़े, औलादें छोड़ दी, उनका टेस्ट क्लियर था, 100/100 मार्क्स लेके वो सक्सेसफुल थे। क्योंकि जब एक बंदा अल्लाह के घर छोड़ दे तो और बताएं क्या रह गया पीछे। ठीक है, अब इम्तिहान था उन लोगों का जो मदीना में आने के बाद मुस्लिम हुए थे, जिसको आप अंसार कहते हैं। एक तो अंसार जो पहले से अल्लाह के नबी के मदीना में आने से पहले मुस्लिम हो चुके थे, उन्होंने तो अपने घर बार खोल के इसका सबूत दे दिया था कि कोई बात नहीं, पूरा घर हमारा था, अगर एक मुहाजिर का हो गया तो नो प्रॉब्लम, बीवियां मेरी चार थी, एक को छोड़ दिया, अगर अंसारी को महाजर को मिल गई वो तो इस टेस्ट में बिल्कुल क्लियर हो गए, वो महाजर बन गए, ये अंसार बन गए। ये किस्सा हम सूरत अनफाल में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह ने इनके लिए आसमान से सर्टिफिकेट दिए हैं कि इनसे ज्यादा कोई है ही नहीं। रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, एक ने घर छोड़ा दूसरे ने अपना घर खोला, वो भी पास थे। असल मसला था उन लोगों का जो मदीना में आने के बाद से इस अरसे के दौरान मुसलमान हुए, अभी इनका कोई टेस्ट नहीं हुआ था, प्रैक्टिकल टेस्ट। इन्होंने अल्लाह के नबी की जुबान से इल्म सीखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके तकाजे दिस एंड दैट, लेकिन नबी इन पे को कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल चोट नहीं पड़ी। बात समझ गए ना, अल्लाह ताला इनका टेस्ट लेना चाहते थे कि अगर मैं इनको कोई एक ऐसा हुक्म दूं कि जो इनकी तबीयतों के खिलाफ और इनके पुराने बचपन से तरीके के खिलाफ है, तो क्या ये उसको मानते कि नहीं मानते। तो इसलिए हुक्म अब आने वाला था कि अब बैतुल मकदस से वापस बैतुल्ला पे आएगा, तो भला देखते हैं कि ये क्या करते हैं। बात बात है, तो ये किबले की तब्दीली का हुक्म न्यू मुस्लिम्स का एक टेस्ट था कि क्या अल्लाह के हुक्म पर बचपन से जिस तरफ मुंह करके इबादत करते करा रहे थे, क्या ये उससे अपने आप को दूर करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। इसका थोड़ा सा एक सियासी पहलू भी समझ लें। ये सारी बातें आज के सबक में आनी है, लेकिन आपको मैं शुरू में इसलिए दे रही हूँ कि सबक का खुलासा हो जाए, जो फिर बाद में बात को आसान कर देता है। और वो क्या है कि यहूद क्या सोचते थे कि हम लीडर हैं। मदीना के वो बेताज बादशाह थे मुसलमानों के आने से पहले। शुरू में जब मुसलमान 16-17 महीने तक उधर ही नमाज पढ़ते रहे जहां यहूद पढ़ते थे, तो उनकी अना को तस्कीन मिली, ईगो को सुकून मिला कि कोई बात नहीं, आज इन्होंने हमारे किबले की तरफ मुंह किया, कल ये हमारा दीन भी इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, अब जब थोड़ा सा उनको अंदर से ये सुकून इत्मीनान मिल गया, अब जब वापस उनको बैतुल मकदस की तरफ किया जाना था, बैतुल्ला की तरफ, तो यहूद को बहुत चोट पड़नी थी। कह रहे ये क्या हुआ, ये तो ग्रुप बन गए, वो इनको तो इतनी तरक्की मिल गई, ओ हो, जो कल तक हमारे हाथ में था, जो साथी थे लोग थे, वो इनके पास चले गए। तो इस पे यहूद की तरफ से बहुत बड़ा शोशा उठना था, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ का सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास, ए नबी जरा तसल्ली रखिए, अन करीब बहुत बड़ा आपके खिलाफ प्रोपेगंडा होगा। बस बस दो रुकू तक आप देखेंगे ये मजमून चलेगा, और पीछे से आप देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबक के नाते से दो रुकू से जहनी तौर पे खाना काबा की बातें शुरू हो चुकी है ना पिछले पारे में। ये रब्त है दोनों पारों का कि दूसरे पारे के आखिरी दो रुकुओं में इब्राहिम का जिक्र, उनकी कुर्बानियों का जिक्र, बैतुल्ला का बनाना, इस्माइल और इब्राहिम का आपस में मिलके बनाना, इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला तब्दीली ला रहे हैं, और तब्दीली लाते लाते इस तरह से वह हालात बनते जा रहे हैं कि इतना इतना ज्यादा रिएक्शन हुआ था इसका। आयतों के साथ आपको लेके चलती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप इसकी तरफ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि अल्लाह सुबहान ताला की सुन्नत क्या है कि किसी काम के होने से पहले ही लोगों को उसके लिए तैयार कर दिया जाए, ताकि जब वो काम पड़े तो लोग घबरा कर उस काम को करना छोड़ना दें। ठीक है, ये थी एक तमहीद। अब चलते हैं आयतों के साथ, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसमें हम ऐड करेंगे बात के दौरान। आयत नंबर 142, आप लोगों को नजरें इस वक्त कहाँ होनी चाहिए, पारों के ऊपर, और छोटे छोटे जुमले बीच में लिखिए, ताकि आप इस सारी तफसीर को जो भी आपने सुनी खुलासे के तौर पर, इसको इन आयतों के साथ रिलेट भी कर सके। फरमाया सयकुलु, अन करीब कहेंगे, कौन कहेंगे, अस्सुफहाउ नादान लोग, किन में से, मिनन नासी लोगों में से, कहाँ के लोग, मदीना के लोग। और अस्सुफहा से यहां मुराद वो अहमक और कम समझ लोग जो फौरी रिएक्शनरी हो जाते हैं, यहाँ यहूद भी मुराद है, और न्यू मुस्लिम्स में से वो कमजोर लोग अभी जिनका ईमान इतना पुख्ता नहीं हुआ, वो किबले की तब्दीली का हुक्म सुनकर जरूर कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर अन्नास के बाद आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, इंग्लिश में आप जानते हैं कि जब किसी का कलाम होता है ना, तो उससे पहले ब्रैकेट्स होती हैं, छोटे छोटे कॉमास होते हैं, और बाद में स्टार्टिंग कॉमास कहाँ है, माँ से पहले, ये उनका जुमला है, मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, अलैहा के बाद आप क्लोजिंग कॉमास लगा ले। ये था वो जुमला जो लोग कहेंगे, और अल्लाह ने यहाँ मनोअन कोट कर दिया, अनकरीब, ना समझ, बेवकूफ, जज्बाती, جلد باز قسم کے لوگ کہیں گے ما واللہم، کس نے پھیر دیا ان کو، ہم کے نیچے لکھیے کن کو، ان مسلمانوں کو، کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، کون سا قبلہ تھا، اللتی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے، یہ کون سا قبلہ تھا، بیت المقدس، جی بالکل. اب یہ وہ پروپیگنڈے کا جملہ تھا جو ابھی بولا نہیں گیا. یہاں دیکھیے یہ تقدیم اور تاخیر ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کچھ کام جو بعد میں ہونے ہوتے ہیں کا تذکرہ پہلے کر دیا جاتا ہے. ابھی ہوا کچھ نہیں. ان مدینہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی کہ آپ کے اوپر اب ایک ایسا حکم نازل ہونے والا ہے جس کا بہت نیگیٹو پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہوگا. چلیں تھوڑی سی بات آسان کرتی ہوں. آپ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، سارے آپ کے ارد گرد کے خوشی ہوں گے نا لوگ، الحمدللہ. آپ کے گھر والے بھی بہت خوش ہوں گے کیونکہ اب آپ کے اندر پازیٹیو چینج آئیں گی. آپ کے دوست احباب بہت خوش ہوں گے کہ چلے آپ مصروف ہو گئی، پہلے آپ ہر وقت ان کو ستاتی تھی فون کر کر کے، گھنٹوں کی باتیں کر کے. ہاں آپ کے کوئی پرانے استاد تھے جو انہوں نے اپنی حت الوسع بہترین طریقے سے آپ کو سکھایا، وہ اور خوش ہوں گے کہ چلے اب ایک باضابطہ طریقے پہ آپ یہ چیز سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کل آگے دوسروں کو سکھا سکیں. لیکن جس دن آپ کوئی ایسی بات اس کلاس میں سن کے جائیں گے جو آپ کے ارد گرد والوں کے اوپر تنقیدی چوٹ ڈالے گی، ان کے بچوں کی شادیاں، تربیت پہ، پہننے پہ، گھر لینے پہ، دینے پہ، جس دن آپ وہ بات کریں گے نا تو اس دن سب شور مچا دیں گے. میاں بھی کہہ دیں گے کوئی ضرورت ہی، بیٹھو گھر، تم میرے اوپر اب ڈوب ڈالنے لگ گئی ہو. تو جب بھی قرآن کو اپلائی کریں گے نا، جب بھی کسی چیز کو آپ لاگو کریں گے تو ریئیکشن ضرور ہوگا. یہ جو بات ہے نا، ما واللہ من قبلتہم اللتی کانوا علیہا، کس نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پہ یہ تھے، تو یہ صرف وہ قبلہ نہیں ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ایک جہت ہے، اس سے مراد وہ لائف سٹائل بھی ہے. یہی شور اور ریئیکشن ہر اس بندے کے قرآن کے جو قرآن پڑھنے کے بعد خود کو بدلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے تو شاید ہی کم لوگ دیکھے ہوں گے، الحمدللہ ہمارا چونکہ سفر ہی ہے تو ہم نے تو لوگوں کے قبلے یوں دیکھے بدلتے ہوئے کہ صرف 90 ڈگری نہیں، 180 نہیں، 360 کا پورے کا پورا ٹرن آ جاتا ہے. سلیو لیس جو ہوتی ہیں وہ نقاب میں بدل جاتے ہیں، یہ قبلہ بدلا گیا، بے نمازی نمازی ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کے مریض لوگوں کو سکون آمیز باتیں بتانے لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ اپنے لیے عمل کی بات لکھ لیں کہ جب بھی اللہ کی وحی آپ کی زندگی میں آئے گی تبدیلی ضرور آئے گی، اور تبدیلی کے ساتھ ریئیکشن ضرور آئے گا. آپ نے اس ریئیکشن کو کیسے سفر کرنا ہے؟ اسمائل، خاموشی اور دعا سے. نہ تو دلائل دینے، لمبے لمبے زبان نہیں کھولنی کیونکہ ابھی آپ کو حدیثیں بھی نہیں آتی صحیح طرح سے، آیتیں آپ ٹھیک پڑھ نہیں سکتے، آدھی بات کر کے رو پڑیں گے اور ہی نقصان کریں گے. خاموش، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو بہنے دیجئے. اگر جذباتی طور پہ ان کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے تو کر دیں، لیکن کسی کے منہ نہیں لگنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹریک پہ رہیں، بالکل مجھے بات کرتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ ہائی وے پہ سب گاڑیاں اس رخ پہ جا رہی تھیں، اتنے میں آپ دور سے دیکھیں کہ ایک گاڑی ٹرن لے کے اپوزٹ وے میں آنے شروع ہو گئی، یعنی گاڑی صرف نارتھ ٹو ساؤتھ جا سکتی تھی، اور کوئی بندہ ساؤتھ ٹو نارتھ جائے تو آپ دیکھیں سارے گاڑیاں لے کیا سوچیں گے، ماں واللہ من قبلتی ملتی، وہ دیکھو دیکھو یہ کدھر آ گیا، ہائے ٹکرا ہوگا، پھر وہ گاڑی بچائے گا. بالکل ایسی چینج قرآن کے ساتھ آتی ہے، اور نبی کی زندگی میں اس کی عملی مثال قبلے کی تبدیلی ہے. اب کہنا کیا، آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کیوں بدل رہی ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو ادھر رہتی ہیں، آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ یورپ میں، تو کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، کیوں جھگڑتے ہو اللہ کے بندو، بیت اللہ بھی اللہ کا تھا، بیت المقدس بھی اللہ کا تھا، اللہ کا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہ تو ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ہم بیت المقدس کو کرتے ہیں. یہاں لکھیے، مسلمان بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، بیت اللہ کے رب کو کرتا ہے. اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے ذہن میں؟ چھوٹی سی سورت ہے قرآن کی آخری پاروں میں، آپ میں سے اکثر نمازوں میں پڑھتے ہوں گے، سورت بلد، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی. یہ نہیں کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ. ایک ہندو نے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک موقع پہ تانا دیا کہ تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم پتھر کے بتوں کے آگے جھکتے ہیں، تم بھی تو پتھر کے گھر کے آگے جھکتے ہو. تو اس کا جواب ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نہیں جھکتے، उसकी तरफ झुकते हैं अल्लाह को सजदा करने के लिए, जैसे आदम के सामने सजदा करवाया गया वो असल में अल्लाह के हुक्म को सजदा था। हजरत उमर का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, हजरत असवद को जाके कहा करते थे कि या हजर, ए पत्थर, पत्थर है ना, फायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मैं सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते देखा। ये है मुसलमान का अकीदा। तो याद रखिए कि जाहरी इबादत, इबादत में किबला किधर हो क्या हो, ये अहम चीज है, लेकिन ये मकसूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे इस वक्त आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, ये मकसूद नहीं है कि आप कुरान पढ़े, मकसूद है कि इस कुरान के साथ आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आए, ये कुरान आपको सिबगत अल्लाह में डाल दे। आज का ये एक बहुत बड़ा फितना है, कुरान पढ़ने वाले, दीन सीखने वाले, बाज़ औक़ात सारे नहीं, बाज़ औक़ात वो उसी के रिचुअल्स में इतना डूब जाते हैं कि उनकी जिंदगी पे उसका अमली असर नहीं आता, रूहानियत में तब्दीली नहीं आती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनसे को लड़ो नहीं। यहाँ से पता चल रहा है कि मुसलमान बहसों से झगड़ता नहीं है, बहस नहीं करता। कुल लिल्लाहि अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का मगरिब भी अल्लाह का है, यहदी में यशाओ इला सिरात मुस्तकीम, जिसको चाहता है वो सीधे रास्ते की तरफ दिखा देता है रास्ता, जो बंदा भी उसकी तरफ चलता है अल्लाह उसको रास्ता दिखा देता है। इससे क्या पता चलता है, बहस से बचे, खूबसूरत तरीके से बात कर दी। आज कोई आपके अंदर चेंज आती है और कोई आपकी चेंज देखता है, तो क्या ये आयत अगर आपको याद हो या इसका तर्जमा तो आप अगले सामने रख सकते हैं, यहदी अल्लाह रात को दिखा दे। अब ये कि तुम बेहिदायत हो मैं हिदायत पे हूँ, तुम जहन्नमी हो मैं का मोमिन हो, डोंट से दिस। अल्लाह आपकी जुबान पे आयतें जारी कर दे। 100 झगड़ों से बचने का इलाज कि जो कोई बात करे उसके जवाब में आप कुरान की आयत पढ़ दें, और उसके लिए आपको फिर इसमें डूबना पड़ेगा। खैर मुसलमान होता ही वो है कि जो अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाए, बात खत्म हो गई। अब यहाँ बात खत्म कर दी, अगली आयत इंतहाई अहम आयत, पूरे पारे की थीम आयत है। यहां से अब एक और छोटी सी बात नोट कर लें, आपको याद नहीं होगा लेकिन सूरत बकरा के शुरू में आपको ये बात बताई गई थी कि सूरत बकरा के दो हिस्से, पूरी सूरत पहले हाफ में माजी के मुसलमानों से खिताब है, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, 3 दफा ये पुकार आपने पहले पारे में सुन ली, याद है। सूरत बकरा का सेकंड हाफ जो है वो उम्मत मुस्लिमा यानी हाल के मुसलमानों से खिताब है, इसलिए ये दूसरा पारा पूरे का पूरा मुसलमानों के लिए। अगर आप में से किसी के दिल में ये फीलिंग भी आ गई ना कि पहले पारे में यहूद की इतनी बातें की हो गई, तो इस दूसरे पारे में हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे जब कल से शुरू होंगे वो मजमून, तो आपको लिखाऊंगी कि एक उम्मत माँ किन औसाफ की वजह से बनती है, क्या डूज एंड क्या डोंट्स है, उसका तस्करा इस पूरे पारे में आएगा। इबादात से लेके मामलात, हत्ता के तलाक, इद्दत, रजात, खुला, शोहर बीवी का मामला, पीरियड्स की बातें, किसका किससे निकाह हो, हज की बातें, रोजे की बातें, नमाज की बातें, कसास, जिहाद के दर्जे, ये सब आप इस बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना एनरिच्ड पारा है कि अल्लाह अकबर, जिसको आप कहें कि कूजे में दरिया को बंद करने वाली कैफियत है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं छोड़ो, वो जो भी कहते हैं उनको छोड़ो, तुम खुद को पहचानो, व कजालिका, और इसी तरह। किस तरह, आप में से कोई हाथ खड़ा करेगा, किस तरह इस कजालिका के पीछे आप कह ले कि जैसे तिल की ओट में पहाड़ छुपा हुआ, आप पीछे भूल जाए बनी इसराइल को, अब कोई नहीं पुकारो नहीं, अल्लाह मुझे और आपको कह रहे वकजालिका, और इसी तरह। किस तरह, नीचे लिखिए, जिस तरह यहूद को चुना था कल तक, कल तक यहूद को मौका दिया था, ए उम्मते मुस्लिमा आज तुमको जालनाक उम्मतम वसता, हमने आपको उम्मत वसत बना दिया, हमने आपको दरमियानी उम्मत बना दिया। यहां से समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने दौर में बनी इसराइल को, अहले किताब को एक काम के लिए चुना था कि दुनिया में अल्लाह का पैगाम आम करेंगे। पहले पिछले बारे में बहुत दफा हम पढ़ चुके, नबी भेजे, नेमते दी, जहानत दी, बदल तुकुमल आलमीन, आप सारा कुछ सुनते गए। यहूद को इंटेलिजेंसी भी बहुत सारी दी, लेकिन उनके उलमा के दुनिया की मोहब्बत और अपने जहन को गलत चीजों में ले जाने की वजह से पूरी की पूरी कौम दूसरी तरफ चली गई। पहले पारे में 3 बार उनको कहा, संभल जाओ संभल जाओ, या बनी इसराइल किन की औलाद हो, औलाद याकूब, नहीं संभले। अल्लाह ताला ने अब इस पारे में, जिसको आप कह लीजिए कि तख्ता उलट दिया, ये जो कजाली का जाल ना को मम्मत ना वसत है ना, ये बिल्कुल अपनी जुबान में ऐसे है कि एक हकूमत को उसके इक्तदार से हटा दे और उसकी जगह दूसरे को जगह दे दे। जब कोई हकूमत अपना काम अच्छा नहीं करती तो अमूमन आप देखते हैं कि मार्शल लॉ लग जाता है, फौज ही आ जाती है और वो इख्तदार लेके दूसरों को हटा देती है कि चलो अब तुम काम करो। बार दफा हिजब इख्तलाफ ऊपर आ जाती है और इख्तदार जो है वो जेलों में चली जाती है। अल्लाह ताला करे वक्त जालिका। और इसी तरह ओ मुसलमानों, इस मुकाम को पहचानो, जाल ना कुम, अब हमने तुमको इख्तदार दे दिया है, किसका, उम्मत वसता, उम्मत वसत बना दिया। लफ्ज वसत जो है ना अरबी जुबान में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो वही लफ्ज है जिसको आप उर्दू में वास्ता कहते हैं ना, अल्लाह के वास्ते, तुम वास्ता हो। किस तरह वास्ता हो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ते हो। हमें कलमा नहीं पढ़ना पड़ा, हमें पढ़ा दिया गया बचपन में, वही हमारे घर में थी, कुरान नबी रसूल जन्नत जहन्नुम बचपन से सुनते आए। लेकिन बहुत सारे लोग आज दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको ये नेमतें पैदाइशी तौर पे नहीं मिली, उनके माँ बाप काफिर थे, बुद्ध मत थे, हिंदू थे, कोई भी थे, जो उनका रिलीजन है उस पर वो खुश थे। मुझे और आपको एक बहुत अहम काम दिया गया कि यू आर अ कैरियर, बीच में इंटरप्रेटर हो, जाओ उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, कहो उनको कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, और लोगों को इस्लाम की दावत दो। यही बात हम बड़ी तकरार के ससुराल इमरान में पढ़ेंगे, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगो तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए नाजिल की गई। ये है वो मुकाम जिसको आज उम्मत मुस्लिमा भूली हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, तो इसके दो जवाब है, बींग आ इंसान, ह्यूमन बींग, इंसान होने के नाते इंसानों की पैदाइश का मकसद सूरत ज़ारियात में आप पढ़ेंगे, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये तो ओवरऑल हर इंसान की पैदाइश का मकसद है। और दूसरा, उम्मत मुस्लिमा को क्यों पैदा किया गया, ये सवाल कोई आपसे करे है कि तुम क्या हो, तुमको हमने उम्मत मुस्लिमा बनाया, शुहदा अलन्नास, तुम लोगों पर गवाह बनो, शहादत हक की गवाहियां दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत देने में उनकी मदद करो, ये काम है, तबलीग करो, लोगों को अल्लाह का दीन बचवा बताओ, उनको जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा सको। तो आ गया ना वास्ता। और इस वास्ते के लिए मुसलमानों को क्या करना पड़ेगा, नंबर एक, अपने कॉल, अपने फेल और अपने अमल से खुद मुसलमान दिखना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, आप देखते हैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, तो चाहे कभी भी उस अदाकारा ने वो टूथपेस्ट ना यूज की हो, तो उसको टूथपेस्ट यूज करता दिखाते हैं ना, फिर स्माइल दिखाते तो लेंगे ना कि ये अदाकारा ये टूथपेस्ट लेती है और देखो उसके दांत चमक रहे हैं। और अगर आप करें एडवर्टाइजमेंट उस टूथपेस्ट की और वो अदाकारा हाथ में कोई और कंपनी का टूथपेस्ट पकड़े हो या कुछ और करे या उसी टूथपेस्ट को पकड़ के हाय दांत में दर्द है और चीख रही हो चिल्ला रही हो, कभी उसके कहने पे कोई टूथपेस्ट खरीदेगा। ये आज मुसलमानों को कहा गया, तुम उम्मत वसत हो, खुद अपने इस्लाम पे फख्र करो, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, अपने इस्लाम पे मिलो और चीयरफुल रहो, स्माइली, खुश, एक्टिव, कॉन्फिडेंट, दुनिया के किसी मैदान में जो को आई एम अ मुस्लिम, दैट्स आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मेरे साथ ये वो है, ताकि लोग तुम्हारी इस एडवर्टाइजमेंट से इस्लाम सीखे, इस्लाम को खरीदे और हम खुद रोते धोते। आज जब मुसलमान सिवगत अल्लाह की बजाय गैरों के रंग ढंग में बाहर निकलता है, जरूरत भी रखता है किसी को कहने का कम टूवर्ड इस्लाम, वो कौन सा इस्लाम है जो दिल के खाने में छुपा हुआ है, खाना काबा में जाके नमाज पढ़ लो। यहां समझिएगा, جب تک چلتے پھرتے اشتہار نہیں بنیں گے اسلام کے، امت وسط کا حق ادا نہیں کریں گے. کل تک، کل تک سے مراد جب تک نبوت تھی دنیا میں، آج تو ختم ہو گئی نا. سورۃ الاحزاب میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، خاتم النبی، مہر لگ گئی، دیٹس اٹ. کل تک ہدایت کا تار کہاں سے تھا؟ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالی سے میسج، بیچ میں جبرائیل علیہ السلام، ہر نبی کے پاس وہی جبرائیل کی آئی، اور جبرائیل کے بعد وقت کا نبی. چین دیکھیں نا، پہلی چین اللہ کی، دوسری کڑی رسالت مل، اور تیسرا لڑی اس وقت کا نبی تھا. امت مسلمہ کو اللہ نے اس تین چینز میں ایک چوتھی کڑی بنا دیا، امت وسط بنا دی، کہ اب تم لوگوں کے بیچ میں ایک نئی کڑی بن گئے ہو. بتائیے اس مقام کے اوپر دنیا کی ہر نعمت قربان ہو سکتی؟ واللہ اللہ مسلمانوں کو کام دے رہا ہے کہ جس پہ دنیا کام قربان ہے، ایک جاب دے رہا ہے، پرماننٹ جاب. لے آف نہیں ہو سکتے تم کبھی بھی. یہ الگ بات ہے، میں ارتد دم ان کو من دینی، مرتے دم تک کے لیے امت مسلمہ کے ایک ایک بچے کو اللہ نے جاب دے دی، شہداء علی الناس، گواہیاں دو. یہ گواہی صرف زبان سے نہیں ہوتی کہ پلیز بیکم مسلم، ایک فلائر دے دو پلیز مسلمان ہو جاؤ، شرٹ پہن لو آئے ماں مسلم. مسلمان زمین پہ چلتا پھرتا گواہ ہوتا ہے، لوگ اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو، اس کی ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور کہا تم دنیا میں یہ کام کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی جب لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام دیا تھا لوگوں کو، وہ کہیں گے جی دیا تھا، آف کورس 950 سال تک تو حضرت نوح نے پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ کہیں گے گواہ بلاؤ، ان کی قوموں کو بلایا جائے گا. اب امیجن کریں آپ، ذرا کٹہرہ ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، حضرت نوح کٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح بتائیے کیا ہم نے آپ کو جو پیغام دیا تھا لوگوں کو دینے کا دیا؟ وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ دیا. سورہ نوح پڑھ لیجئے، انی دعوت تم لیلم و نہارا، اللہ میں نے تو ان کو صبح کو بھی بلایا، رات کو بھی پکارا، کبھی چپکے چپکے بلایا، کبھی اونچی بلایا، کر دیا تھا. اللہ کہیں گے گواہ لاؤ، فرشتے ان کی قوم کو لے کے آئیں گے، کیا تمہیں نوح نے پیغام دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ؟ صاف مکر جائے، اللہ کوئی نوح کا نام کا بندہ ہی نہیں آیا، جھوٹ بول دے گی قوم. اب حضرت نوح مجرم ہے کہنے کی زبان میں، اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نوح آپ کی قوم تو کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں آئے، اب کیا کیا جائے، کوئی گواہ لے کے آؤ. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائیں، وہ ہمارے گواہ ہیں. وہ کیسے گواہیں؟ بلایا جائے گا. اب ہم آپ جیسے اللہ کر دے کہ خوش شعور والی زندگی بسر کر جائیں گے، اللہ کہیں گے بتاؤ، حضرت نوح کہیں گے کہ اے امت محمدیہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں آیا تھا اپنی قوم کی طرف؟ سب کہیں گے جی اللہ تعالیٰ، بھی آئے تھے نوح 950 سال تبلیغ کی، رات دن پکارا، ان کو ڈانٹا گیا، ڈپٹا گیا، پھر بھی چلتے رہے. اچھا یہ گواہی کیسے دیتے؟ وہ قومیں کہیں گی یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت نوح کی قوم تو ہم سے بہت پہلے آ گئی، امت محمدیہ تو آخری ہے. وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ کیسے بتا سکتے، یہ تو اس وقت ہے ہی نہیں. پھر پوچھا جائے گا امت مسلمہ، امت محمدیہ تم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ یہ گواہی مشاہدے کی بنیاد پہ نہیں دے رہے، کہ ہم دیکھ رہے تھے اس کو، مشاہدہ کر رہے تھے، ہم علم کی بنیاد دے رہے تھے، کیونکہ ہم نے دنیا کی سب سے سچی کتاب میں پڑھا انا ارسلنا نوحا الى قومه. یہ گواہی کون دے گا؟ جس نے یہ قرآن پڑھا ہوگا، جس کو اس کی سمجھ آئے گی، اور اس بنیاد پہ نبیوں کی برات ظاہر ہو جائے گی اور قومیں جھوٹی پڑ جائیں گی. کبھی سوچو تو سر، کبھی تو اپنے مقدر کو تو پہچان. آپ کبھی علامہ اقبال کی شاعری دیکھے، دل پسیجتا ہے کہ تو کیا تھا، ارے مسلمان تو کیا بن گیا. یہ تو واللہ ہی ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کو ملکہ کے محل میں جاب ملے اور اس کو چھوڑ کر وہ کسی جگہ کلرک کی جاب کرے. آج امت مسلمہ صرف اس امت وسط کے لفظ کو سمجھ جائے، میں کہتی ہوں قربان کر دے اپنی دنیا کی ہر نعمت. یقین کرے ایک آنر ہے، از اے بگ آنر. آج کے فتنوں کے دور میں اگر اللہ آپ کو اپنے کام کے لیے چن لے، اس سے بڑا کوئی آنر نہیں ہے، یقین کیجیے. میں تو فخر کے ساتھ یہ بات کہنے کو تیار. ظاہر ہے اتنا ہم ٹریول کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جتنے مرضی الحمدللہ ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں کیوں آ رہے ہیں، آپ ادھر کیوں جاتے ہیں، آپ کیوں. تو ان کو صرف ایک بات سمجھاتی ہوں میں، اور ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو احساس دلاتے ہیں کہ اچھی مائیں کیسی بنو، اچھے بیٹے کیسے پیدا کرو، ان کے فیملی ایشوز. یقین کرے اس بات پہ ان عورتوں کی آنکھوں کے اندر میں ایک چمک دیکھتی ہوں. کبھی ریسنٹلی ہم 2 دن پہلے آئے ہیں، کہنے لگے آئی سو یو ٹریول اے لاٹ. پھر ان کے جو سوال دو بات ہے، کیوں کیا کرتے ہو، پھر اس میں ہلکی پھلکی بات، کیوں کرتے ہو، کیا کرتے ہو. میں نے کبھی پین آف دس نیشن، ہمارے مسلمان اس وقت اس طرح سے ہو گئے. ہم صرف ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فوکس کرو. یہ بات سن کے نا، ابھی ریسنٹلی کی بات ہے، بلیک لیڈی تھی، کہنے لگی تم سچ کہہ رہی ہو. کہتے ایون اس وقت میں رات کو 12 بجے کاؤنٹر پہ کھڑی ہوں، میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں. پھر میرے لیے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ان کو تبلیغ کا، کہ دیکھو کہ میں نے اس کو آخر میں کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دوں کہ اگر تم اپنے اس تکلیف دہ زندگی سے نکلنا چاہتی ہو تو میری اے مسلم وومن، مسلم مین، کیونکہ وہ بہت اچھے ہسبینڈ ہوتے ہیں. کہتی بٹ آئی ایم ناٹ اے مسلم. یعنی آپ فیل کریں. وہ کہتی آپ ایسا کیوں کرتے، کہنے کی یو ہیو کڈس. میں نے کہا الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے روکا ہوا ہے، الگ رکھا ہے. ہمیں یہ پین ہے کہ ہمیں مسلم فیملیز کو لانا ہے. اب اس کو ہم یہی سیکھتے ہیں نا، اب اس میں قرآن دے. اور اس بات کو بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سوسائٹی میں رہتے ہوئے مسلم فیملیز، مسلم سے مراد ہے کہ کڈس کی کیسی بات کریں، کیا کریں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو گڈ، یو ڈوئنگ دا گڈ جاب. نہ ہمیں کسی سے کچھ لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے. اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کام پہ کتنا مان بندے کو ہوتا ہے. اگر ہم میں سے کسی کو وائٹ ہاؤس سے جاب کا لیٹر آ جائے نا، ایک وہ کہہ دے نا کچھ نہ کرو، پیسے لو، بس آ کے ہمارے نام کے ساتھ تمہارا نام لگ جائے کہ یو ورک ان وائٹ ہاؤس، تو میرے لیے ہم جوتیاں بھی سیدھی کرنے کو تیار ہیں. اور کہاں امتوں وسطا، اوپر سے جاب لیٹر آتا ہے اور ہم صرف ایک نوک پہ جوتی کی رکھ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی جاب مل رہی ہے، ہمیں دنیا، ہمیں یہ ہے وہ ہے. صرف اس، جس کو آپ کہہ لیں کہ اس جاب لیٹر کی قدر آ جائے نا مسلمانوں کو، تو میں کہتی ہوں کہ صرف کفات، کفات کا رسک لے. ان کو مال دولت ان کا جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن جب مسلمان اس کے اپوزٹ اور دنیا بنانے پہ لگے، اور دنیا سے جانے پہ لگے، تو اللہ تعالیٰ کک آؤٹ کر دیتا ہے، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے. یہ پہلا اینگل تھا امت وسط کا. اب دوسرا لیجئے، وسط کا لفظ عربی زبان میں مڈل کے لیے آتا ہے، اوسط کا لفظ اردو میں سنیں، اوسط درجے کی نیکیاں، مڈل پارٹ. جیسے اگر یہ ٹیبل ہے نا پورا، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اس کا حصہ ہے نا، بلکہ اس کا یہ مڈل، یہ اوسط ہے، وسط. تو اس کو معتدل کہہ لیں اردو میں، بیلنسڈ کے معنوں میں انگلش میں، کہ امت مسلمہ از اے بیلنسڈ نیشن، ایکسٹریمزم سے اور تفرید سے پاک. کیسے؟ اسلام سے پہلے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے، 2 گروپ دنیا میں عام تھے، جیوزم اور کرسچینز. جیوز میں کیا تھا، دین کے نام پہ بہت سختی تھی، حتیٰ کہ وہ آگے پڑھیں گے انسانی معاملات میں بھی، کہ جب پیریڈز میں عورت ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ کا کھاتے بھی نہیں ہے، ان کو الگ کر دیتے، اتنے زیادہ ایک ایکسٹریم پہ تھے، تقویٰ کا ایک ساختہ معیار. کرسچینز میں دین کے نام پہ بہت ہی نرمی ہے، کہ وہ اس کے ساتھ وہ تعلق بھی قائم کر لیتے تھے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. جیوز نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، کرسچین نے ان کو ابن اللہ کہہ دیا. امت مسلمہ کے ان سب کے بیچ میں نیشن، کہ عورت کے ساتھ نہ تو اس کو اچھوت سمجھ کے چھوڑنا ہے، نہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، بلکہ فَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بیلنس رویہ ہے، کہ ایک تکلیف دہ عمل کے علاوہ اس کے ساتھ کھانا پینا رہنا رکھو. یہ ہے امت وسط، بیلنس نیشن. انہوں نے اس کو ابن اللہ کہا، انہوں نے ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، کہ اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھے. تو اسلام از اے بیلنس ریلیجن، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بیچ میں بیلنس. کھاؤ بھی پیو بھی، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے. یہ نہیں کہ ساری رات عبادت کرتے رہو اور سو نہیں، سارے دن ہمیشہ روزے سے رکھو، رہو اور کھاؤ پیو نہیں. یعنی ایک بیلنس نیشن ہے، واسطہ بیلنس. نیشن ہے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خوبصورت طریقے سے دنیا میں رکھا کہ ہر کام کو کرنے والا اپنے آپ کو خوش محسوس کر حکم پہ چلتا ہے. اور یہ مقام اگر آج کا مسلمان اپنا لے دین اور دنیا کا توازن, تو یہ پہلا جو مضمون تھا نا مسلمانوں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا, یہ مشکل ہی نہیں. صحابہ کرام اس کا بہترین نمونہ تھے, اسلام پہ عمل بھی کیا, علم بھی کیا رکھا, عمل بھی کیا. اللہ کے ساتھ تعلق میں رات کو اور دن میں فرسان بن نہار تھے, شاہ سوار بن کے کفار کی آنکھوں سے آنکھیں ڈالتے تھے. یہ بیلنس رویہ جب مسلمان میں آئے گا تو انشاءاللہ دنیا کو اسلام خوبصورت دیکھے گا. میں تو اپنا فرض سمجھتی ہوں جہاں کسی نان مسلم سے انٹریکشن ہو اور میں اس کو اسلام کا یہ خوبصورت سیٹ اپ بتاؤں. اور اس وقت چونکہ باہر کا فیملی سیٹ اپ ہی ٹوٹا ہوا ہے, میں اسی پہ بات کرتی ہوں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں جو مرضی بات کروں لیکن مثال یا تو ماؤں کی آتی ہے یا بیویوں کی آتی ہے, کیونکہ ہم عورتوں کا انٹریکشن ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے, ہم اسی چیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو گویا کہ پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلیٰ مقام دیا امت مسلمہ کو اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. سورۃ آل عمران 110 آیت نمبر نوٹ کرے, اس کا ترجمہ لکھیے گا جو میں نے ابھی ریفرنس میں دیا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالی گئی. آج ہم نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معاملہ دے دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن گواہ بنیں گے. امت مسلمہ کی امت مسلمہ نبیوں کی گواہی دے گی, تو جب امت مسلمہ کیا کہہ رہی ہے اس پہ گواہ ہے تو محمد رسول اللہ لائے جائیں گے. یعنی ایک پورا چین ایکشن ہوگا اور قیامت کے دن حدیث میں آ کے امت محمدیہ نور کے ممبروں پہ بٹھائی جائے گی. میدان مقصد میں اونچے اونچے ٹیلے ہوں گے جہاں یہ امت دکھے گی. آج اس امت کے کرتوت دیکھیے, دل چاہتا ہے کہ ہمارا حال ہے. اسی لیے یہ دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. آج جو ماریں کھا رہے ہیں نا, چوٹے کھا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم ڈالر کے بھی بھاگتے ہیں. ہمارا پاؤنڈ خدا بن گیا, آج المائٹی ڈالر ہے. آج دین کا کام کرنے والوں کو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کرتے کیوں ہیں, ان کو ملتا کیا ہے, ان کو اسپانسر کون کرتا ہے, ان کے کون کام کرتا ہے. شکوک ایسے پھیلا دیے جاتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ آنا چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں 100 قسم کے وسوسے ڈال کے روک لیا جاتا ہے کہ نہیں وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا اور دس اینڈ دیٹ. یہ ہے وہ تڑپ. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ ہے وہ نقطہ جس پہ اللہ کی مدد آتی ہے. ہر گروہ کے رنگ سے آزاد, ذاتی مفادات سے پاک, بے لوس طریقے سے آپ دین کی تبلیغ کرے, آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں محل بنانے کو تیار ہے. مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تھی نا پہلے 4 دنوں میں, اللہ آج بھی دین کے کام آپ کے کرا سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ آپ کے اندر مخلصون, عابدون, مسلمون, صبغت اللہ, اللہ کے لیے کام کرتے جائیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکتیں دیتا ہے. لوگ انگلیاں دباتے رہ جاتے ہیں, یہ ہوتا کیسے, یہ ہو کیسے رہا, یہ کام کس نے کر دیا. ان کو سب دکھتے ہیں دنیا والے, اوپر والا نہیں دکھتا. اللہ تعالیٰ یہی بات کر کے کہتے ہیں. اب یہ بات ختم ہوئی, اچھا بھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا, یہ صرف ذہنی تیاری ہے. آگے چلیے, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے. کون سا؟ پہلے کس پہ تھے؟ یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کی طرف کرنے کی حکمت کے, الا لنعلم, مگر سوائے صرف اس بات پہ کہ ہم جان لیں کیا, من یتبع الرسول, کون اتباع کرتا ہے رسول کی, یعنی کون نبی کو قبلے کی طرف سے بدلتا دیکھ کر بدل جاتا ہے, اور مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. بظاہر لگ رہا ہے یہاں کی ایڑیوں پہ پھرنے سے مراد قبلے کی طرف منہ کرنا ہے, لیکن یہاں یہ محاورہ ہے کہ کون نبی کا رخ مڑتا دیکھ کر خود کو موڑ لیتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا ان لوگوں کا جو نئے نئے دین میں شامل ہوئے تھے, کیوں کہ جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں. جب بھی دین کے نام پہ کوئی ایسی بات عام ہو جاتی ہے جو وقت کے رواج سے فرق ہے, بہت سارے لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں. آپ سموتھلی روز آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کسی دن کوئی پیسوں کی بات ہو جائے گی, ایک دو بندے کے دل میں شک آئے گا, چھوڑ دیا جائے گا یا چھڑوا دے گا. جس دن ٹیسٹ کی امتحان کی یہاں بات ہوگی, ایک آدھا بندہ لڑک جاتا ہے. یہ ہمارا ماشاء اللہ کئی سال کا تجربہ ہے اللہ کے حکم سے, کہ سیدھی سیدھی کلاس سب کو اچھی لگتی ہے, कोई चेंज आएगी ना इधर जिसमें जरा बोझ पड़ेगा, वक्त बढ़ा दे कुछ लुढ़क जाएंगे, दिन बढ़ा दे कुछ गए, ड्यूटी लग गई कुछ बात कर दी, कोई कुछ नहीं तो दो आपस में बात जरूर कर देंगे, अच्छा अब इस चीज के भी हमारे ऊपर पैसे पड़ने, अच्छा ये काम भी हम करें। ये आजमाइशें हैं कि कुछ लोग फिर दीन से फिर जाते हैं और कुछ मैयत तभी और रसूल, इस तरह से वो पीछे लग जाते हैं कि जो नबी करेगा वो करेंगे। अब ये कब हुआ? जोहर की नमाज पढ़ रहे थे अभी, बल्कि वो आयत आती वहीं लिखाती हूँ। अभी सिर्फ अल्लाह ताला ने ये बता दिए कि ये किबले तब्दील करने आसान नहीं होते। मकसद आप इस आयत के साथ लिख लीजिए टॉपिक कि मकसद क्या था तब्दीली किबले का, तो क्या था कि ये देख लिया जाए कि कौन इस बात पे जमा रहता है दीन पे और कौन पलट जाता है। और दिन रात अल्लाह हमसे यही देख रहा है, पांच नमाजें भी तो हमारे पांच इम्तिहान है ना, कौन दीन की तरफ आता है कौन नहीं आता। अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि कौन जाहिलियत के तासुबात में मरा हुआ है, कौन अपने आप को उड़ पा रहा, कौन लोग हैं जो बनी इसराइल के यानी उस दौर के जो लोग थे उनके असर में इतने आ चुके हैं कि उनको इस्लाम की सादी सादी बातें भी मुश्किल लग रही है अमल करने पे, और कौन है कि जो यत तभी रसूल। इत्तबा लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, तबीयत कहते हैं किसी के फुटस्टेप पे चलना, कदम पे कदम रखना। दो लफ्ज आप बहुत पढ़ेंगे कुरान में, इत्तबाए रसूल और इताते रसूल, पढ़ते ना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल और फत्तबेउनी युखबिबकुमुल्लाह। यहां इत्तबा को समझ लें, इत्तबा में मुंह से नहीं बोलना पड़ता। नमाज पढ़ रहे थे अल्लाह के नबी, माइक लेके अनाउंस नहीं किया कि अब किबला बैतुल मकसद मकदस से बैतुल बैतुल्ला की तरफ हो गया, तो वो बैतुल मकदस से अब बैतुल्ला की तरफ मुंह करो, बल्कि आपने नमाज के दौरान अपना एंगल बदला। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी नमाज अदा कर रहे थे और ऐन नमाज के हाथ दो रकते पढ़ चुके थे, तीसरी रकत के दौरान फरिश्ता आया और उसने अल्लाह के नबी से कहा कि हुक्म हुआ है कि बैतुल मकदस की बजाय बैतुल्लाह को पढ़े। अब आप सोचिए जरा, हाथों को देखे, इधर पढ़ रहे थे ना, इमाम आगे थे, फिर मर्दों की सफे थी, फिर और थी, आपने पूरा टर्न लेके इधर आ गए। जब इधर आए तो जहां पहले औरतें थी वहां इमाम आ गए, अब औरतों को पीछे जाना पड़ा तो मर्दों को आगे आना, एक अपसाइड डाउन वाली कैफियत थी, पूरी चेंज आई कि अल्लाह के नबी फिर मर्द और औरतें मर्दों के पीछे चली गई। अल्लाह कहते वह इनकानत लकबीरा तन, ये बहुत बिग चेंज था, इट्स वेरी हार्ड। कबीरा का मानी आप बड़े में ना सोचिए बल्कि हार्ड के मानों में, इट वॉज अ वेरी हार्ड डिसीजन, बट इल्लाजी मगर उनके लिए बहुत आसान था जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। दुआ करिए दीन का हर हुक्म हमारे लिए आसान हो जाए। वहां तो सिर्फ जहत बदली थी, हमें हाल बदलना पड़ता, हुलिया बदलना पड़ता, लाइफस्टाइल बदलना पड़ता। अल्लाह कहते हैं सिर्फ निफाक वाले दिलों को दीन के अमल मुश्किल लगते हैं, हदल्लाह हो जाए तो फिर देखिए मसला नहीं होगा। खैर अब हुआ क्या, किबला तब्दील हो गया, सीधी सी बात थी, पहले अल्लाह के उधर पढ़ते थे अब इधर पढ़ते थे, हो गया। तो कुछ लोगों ने इस्लाम के खिलाफ विस्पर्स किए, अरे अरे देखो ना इनका कुछ पता चलता है, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, इधर है वो है। अच्छा अच्छा ये बताओ कि ये जो लोग फौत हो गए इस दौरान जबकि बैतुल मकदस की तरफ मुंह कर रहे थे, फिर उनकी नमाजों का क्या हुआ? बात बस है, शोशा, एक शोशा छूटा। और कुछ सहाबा के जहनों में सवाल भी आया कि जो लोग बैतुल मकदस के किबले के दौरान फौत हो गए उनकी नमाजों का क्या हुआ? ये असल में एक सवाल ही था लोगों के दिल में शक करने का, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि उनके ईमान जाया कर दे। यहाँ लफ्ज ईमान इज इक्वल टू सलात, होना क्या चाहिए था यहाँ लफ्ज वमा कान अल्लाहु लियुदिया सलातकुम, अल्लाह तुम्हारी वो नमाजें जाया नहीं करेगा। तो नमाज की जगह यहाँ ईमान का लफ्ज क्या बताता है? नमाज की अहमियत, कि जो नमाजें उन्होंने उस दौरान पढ़ी अल्लाह ताला उनकी माफ करेगा, क्योंकि उस वक्त हुक्म ही ये था। इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि जिसने जिस दौर में जिस हुक्म पे अमल किया उनकी वो नमाजें जाया नहीं होंगी। क्या पता चला कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तुम अमल कर दो। जिन लोगों को कल तक नहीं पता था, ये सवाल उठता है हमारे जहनों में, क्या अब हम तो कुरान से पढ़ रहे हैं कि वो तो ये काम करते हुए मर गए, आता है ना सवाल, تو یہ آیت آپ اس پہ لگا لیجئے کہ اگر تو وہ لا علم تھے، نادان تھے، بھولے تھے، اللہ ضائع نہیں کرے گا. تم زیادہ دعائیں کرو، تم زیادہ نیکیاں کرو تمہارے بڑوں کی گناہوں کو معاف کرنے کی. اب ان بحثوں پہ پڑھ جاؤ، اچھا پھر میری ماں تو جہنم میں گئی، اچھا میرے باپ نے تو یہ کیا. ڈونٹ ڈو دس، اللہ کے اوپر ان کے معاملے کو ڈال دو اور بس کام کرتے رہو کرتے رہو. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ وقت شروع حملے کی تبدیلی سے پہلے کا تھا. بڑے غور سے سننے کی آیت ہے، لمبی ہے اور اس ایک آیت میں کئی زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. کیسے؟ قد نرا، بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهک فی السماء، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا. یہ بتائیے عیسیٰ کب ہوا ہوگا؟ یہ کب کی بات ہے؟ ان 1600 مہینوں کے دوران کی بات ہے. اللہ پیار سے نبی کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے تھے؟ دعا کے لیے. یہ حصہ ایک بہت بڑا اسلامک عقیدہ ہے جس کی دلیل میں پیش کرتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ. آج ایک بہت بڑا شوشہ یہ بھی نا کہ اللہ ہر طرف ہے، آگے بھی، پیچھے بھی، اندر بھی، باہر. اچھی کا فسما، اللہ آسمان پہ. یہ آیت کا حصہ اس کی دلیل ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. خیر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا فکر نہ کریں، ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے. کس طرف؟ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کرتے ہیں. اتنے حصے کو پڑھ کے جو میرے ذہن میں امیجینیشن میں آتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. کوئی ہے یہاں گھومنے کی جگہ بچوں کی؟ کوئی پارک جہاں بچے جانا چاہتے ہیں؟ اب آپ کا بچہ روز اٹھ کے ضد کرتا ہے، مجھے وہاں لے جائیں، مجھے لے جائیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا لے جاؤں گا ویکینڈ پہ. آپ کو بچے کا وہ ضد کرنا بھی پیارا لگتا ہے. بالکل یہی انداز ہے. اللہ کرے ہمیں پتہ ہے آپ جانا چاہتے ہو ادھر، لیکن تھوڑی دیر، تھوڑی اور. فلن کا قبلہ تن کر رہا، ہم آپ کو آپ کی پسندیدہ جگہ پہ لے جائیں گے. اب یہاں تک بات ختم ہوئی، لکھ لیں. یہ 16-17 مہینے کے دوران کی بات تھی. فولی وجہ کا، اس کو بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے حکم کے لفظ. اب بتائیں اگر آپ ان آیت کو نہیں دیکھ رہے تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم اب آ رہا ہے. فولی وجہ کا، بس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اس کو ہائی لائٹ کریں. اگر آپ سے کل کوئی پوچھے کہ اس رکوع میں سے وہ حکم کے لفظ بتائیے جس کی بنیاد پہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ بنا، تو یہ لفظ ہے. فاولی امر ہے، ڈوز ہے، ڈو اٹ، پھیرو اپنا منہ کدھر؟ وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اچھا، جیسے میں نے خلاصے میں ذکر کر دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم کہیں نہیں ہے قرآن میں. یہ نہیں کہیں آئے گا کہ فاولی وجہ کا شطر بیت المقدس، تو وہ تھی وحی خفی، آپ کے دل میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں اب آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا لیکن میں لکھاؤں گی تو آپ لکھتے جائیے. وجہ کا فولی، یہ واحد ہے، یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. ٹھیک ہے. فولی، بس تم ایک پھیر دو وجہ کا اپنے چہرے کو کدھر؟ شطر المسجد الحرام، جدھر مسجد حرام ہے. اس حکم کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ تو بدلنا تھا. آگے چلیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جدھر بھی تم سب ہو. دیکھیے، مَا كُنْتَ واحد ہے، مَا كُنْتُمْ سب ہے، اور جدھر بھی تم سب ہو. فَوَلُّوا، یہ آ گیا جمع کو. اب صحابہ کو حکم دیا گیا، جدھر بھی تم سب ہوگے پس پھیر لو وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اس کی طرف. ہو سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ کی طرف پھیر لو. اتنی بات کلیئر ہے. پہلے حکم صرف نبی کو آیا اور اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی حکم دے دیا گیا. چلیے، یہ بات ہوئی. اس دوران آپ کا رخ بدلا گیا، آپ صرف نہ کہ خود بدلے، صحابہ نے کسی لفظ کو سنے بغیر خود بھی منہ ادھر کر لیے. آج سوچئے ہم ہوتے تو کیا ہوتا، آپس میں لڑے. ابھی میں آپ کے سامنے عید کی پارٹی کی کوئی بات چھیڑوں نا تو آپ کی یہ کلاس اتنے سکون میں نہیں رہے گی، دو گروہ ہو جائیں گے. کوئی کہیں گے 2 بجے چھٹی کرے، کوئی کہے گا 1 بجے چھٹی کرو، کوئی کچھ کوئی کچھ. ہم مسلمان آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ اصل حکم کو چھوڑ کر ہم متفرق ہو جاتے ہیں. अगर सहाबा का भी ऐसे ही मिजाज होता तो वो मस्जिद उस वक्त अखाड़ा बन रही होती। कुछ मुड़ जाते, कुछ ना मुड़ते, किसी के पाँव होते, किसी की जूतियां होती, किसी की कुछ होते, और आप इस वक्त ऐसे मामलात जाते। यहां से सीखिए, ये है इत्तबा। बंदा मोमिन का दिल कंपस की तरह, पुरकार होती है ना, कंपस को बीच में रख के ना उसके इर्द गिर्द दायरे छोटे खेचे या बड़े, हर दायरा एक सिमत में आता है। अल्लाह की जात, अल्लाह की मोहब्बत को आप अपना फोकल पॉइंट बना लें, मरकजी नुक्ता। बंदा है मोमिन यूं घूमता है, अल्लाह ने कहा ठीक है ओके ठीक है, जिधर कहेंगे उधर कर लूंगा। और सहाबा इसमें जीत गए, कामयाब हो गए। सन 2 हिजरी में ये हुक्म नाजिल हो रहा है और मुसलमान इसमें आ गए। क्या पता चला कि एक इंसान जब अल्लाह का हुक्म सुने तो ये ना कहे कि पहले हिकमत बताओ। अब अगर सहाबा वहां हिकमत पूछते, नमाज टूट जाती ना, वजह पूछते, हाय इसका रिएक्शन क्या होगा, हाय मेरे घर वाले इस पे क्या कहेंगे। तो वही लोग दीन के कामों में आगे जाते हैं जो कुरान की क्लास में फैसले करते हैं। ये नहीं कहते अच्छा जरा घर वालों से मशवरा कर लूं, फैसला कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, ये नहीं करते, बस चल पड़ते हैं। जो अल्लाह ने कहा, जिधर कहा, चल पड़े, और अल्लाह सुबहान तआला इस काम के ऊपर उनको लेके चला गया। खैर अब क्या हुआ, किबले की तब्दीली जो थी ना, यहूद के ऊपर एक बड़ी गहरी चोट थी। समझ लीजिए, फिर अगला हिस्सा पढ़ूंगी आयत का। किताबों में यानी तौरात में ये बात लिखी हुई थी कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा, ठीक है, ये उनकी किताबों में लिखा था। किबले की तब्दीली का होना यहूद के दिल पे चोट डाल गया कि एक और निशानी पूरी हो गई कि यही वो नबी है जिसके आने की बातें की गई थी, उसकी तरफ अब इशारा है। वह इन्नल्लज़ीना ओतुल किताब, देखिए पिछली आयत, आयत का शुरू जो था ना माजी से था, फवल्ली वजह का हाल है, और आखिरी हिस्सा मुस्तकबिल को साबित पेश कर रहा है कि वह इन्नल्लज़ीना ओतुल किताबा, बेशक वो लोग जो अहले किताब है, ला यालमूना, अलबत्ता जरूर जानते हैं, श्योर शॉट क्या, अन्नहुल हक मे रब्बिहिम, बेशक ये हक है उनके रब की तरफ से। क्या हक है, लिखिए इसके नीचे 3 बातें। ये किबले की तब्दीली का हुक्म हक है क्योंकि उनकी किताबों में लिखा था, इस नबी का किबला बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है कि ये रसूल हक है क्योंकि उनकी किताबों में तस्करा था। और तीसरा, हु से मुराद कुरान या वही, कि ये कुरान भी सच है, ये नबी भी सच है, और किबले की तब्दीली का हुक्म बता रहा है कि वाकई अल्लाह ताला ने जो बात यहूद की किताबों में कही थी वो सच हो गई, और मेर रब्बिहिम रब की तरफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं किया। और आखिर में एक हल्की सी डांट, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह बिल्कुल गाफिल नहीं है उससे जो के ये लोग कर रहे थे। यहूद की तरफ इशारा है, उनको पता था कि अल्लाह के नबी के साथ ये जो मामला हो रहा है ये असल में हमारी इमामत छिन रही है, ये अब इक्तदार पलटा जा रहा है। दिल में उनके बहुत ज्यादा सांप लौट रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, तो लिहाजा अल्लाह ताला को दिलों में उठने वाले ख्यालात और वसवसे सारे के सारे पता चल रहे थे कि फिक्र ना करो, ये बात तो होनी थी, होके रही। अब हुआ क्या, अल्लाह के नबी को जब पता चला कि इनकी किताबों में ये था कि बैतुल्ला आखिरी नबी का किबला है, तो आपके दिल में ख्वाहिश क्या आई होगी, सोचिए जरा। मैं सिर्फ ये पूरी आयतों को एक साथ करूंगी क्योंकि इसमें साइड में छोटे छोटे इश्यूज है, वो बीच में रखूंगी तो आपको ये मजमून फिर थोड़ा सा शुबा डालेगा। अब चल रहा है आपका जहन में, अब तौरात की एक निशानी पूरी हुई, क्या क्या आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा, हो गई, तो इसके साथ अल्लाह के नबी के दिल में क्या ख्वाहिश आई होगी कि अब ये अहले किताब मुसलमान हो जाए। क्योंकि एक और निशानी पूरी हुई तो अल्लाह ताला उसके जवाब में आयत 145 में कहते हैं, वलैन अतैतल्लज़ीना उतुल किताब, अगर आप इन अहले किताब को दे दे बिकुल्ली आयतिन, सारी की सारी निशानी, मा तभी तक है, ये फिर भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। क्यों, वजह, दिल में तासुब है। ए नबी, आप तो किबले की तब्दीली के हुक्म से समझ रहे हैं ना कि ईमान ले आएंगे क्योंकि इनकी किताबों की एक बात और सच हो गई, लेकिन लेकिन हकीकत यह है कि आप सारी निशानियां भी इनकी किताबों की खोल के दिखा दो, नहीं मानेंगे। वजह तासु, यहां से देखिए, बास लोग पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, दिल नहीं बदलते। दुआ कीजिए हमारे दिल ऐसे ना रहे। दिल में तासुब लेके बैठेंगे ना तो आपको इस किताब से कुछ नहीं मिलेगा। वैक्स लगा के बैठेंगे, किताब का पानी आपके दिल पे जरा भी नरमी नहीं लाएगा, और सख्त दिलों के यहां से उठेंगे। इसलिए मान वाला दिल लेके बैठने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, आप इनके ईमान की उम्मीद ना रखें, ये नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ क्लास में आते हैं ना, हर दिन आपको कोई ऐसी बात लगती है कि जो आपका दिल पिघलाती है। आप घर जाते हैं, अपनी दोस्तों से बातें करते हैं, साथियों से बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सख्त दिली की वजह से, तासुब की वजह से हटे हुए हैं, उनके हालात पे फिट होती है, उनके किसी सवाल का जवाब है। आप यहाँ बैठ के खुश होते हैं, वो अच्छा आज ये बात जाके मैं फोन पे बताऊंगी कि देखो आज तो कुरान में आपके मसले का हल है, और आप क्या सोचते हैं जो ही आपने उनको ये बताना होना करना, चलो कल से फिर मैं भी चलूंगी, नहीं आएंगे। वजह वही आएगा जिसका दिल साफ होगा। कई मजबूरियों में रुके होते हैं, वो बात नहीं होती। आप किसी को बुरा ना सोचे इस वक्त दिल में। मिसाल देने का मकसद यह है कि हर बंदे के हालात फर्क होते हैं। कुछ लोग जो किसी तासुब की वजह से रुक जाते हैं ना, दीन से या दुनिया की मोहब्बत से या जिद है ना, ईगो, वो नहीं आते। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, इनके ना किबले, इनके किबले को ना मानने का गम ना करो, बस एक नियत कर लो कि मैंने भी फिर इनके किबले की नहीं पैरवी करनी, मैंने वापस उस दुनिया के किबलों की तरफ नहीं जाना, मैंने इस किताब को नहीं छोड़ा, पीयर प्रेशर में नहीं आना। ये इस्लाम का मिजाज है। जैसे लोग कहते हैं ना, इंग्लिश का एक मुहावरा है कि इफ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम, अगर आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते तो वैसे ही हो जाओ। जैसे आज बहुत सारे मुसलमानों का रवैया है कि सोसाइटी के गलत रस्म और रिवाज को तुम बीट नहीं कर सकते तो वही करने लग जाओ, मजबूरी है, हालात है, क्या करो। ये नहीं करना, आप फिर अपने काम पे पक्के रहे। ये वही बात है जिसको आखिरी बारे में कहा गया कि लकुम दीन लकुम वलियद्दीन, तुम जिस दीन की इबादत करते हो मैं उसकी नहीं करता। तो यहां से हमें अमल की बात मिलती है कि गैर मुस्लिम या बेदीन लोग अगर दीन की किसी बात को नहीं मानते तो आप ना उनके प्रेशर में आके छोड़े कि ठीक है फिर मैं भी अपने इस दीन को छोड़ देता हूँ। आप बात पहुंचा दे, नहीं मानते तो ना माने। अच्छा अब देखिए, वमा बादहुम बिताबिन क़िबलतबाद, और ना वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करते। अब यहाँ बड़ा खूबसूरत नुकता है अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, और वो क्या कि मुसलमानों को और नबी सल्लम को ये लगता था कि यहूद और नसारा दोनों बैतुल मक़द्दस की तरफ मुंह करते हैं, बैतुल्ला की तरफ नहीं करते। तो दिल में चोट पड़ी, तो अल्लाह ताला तसल्ली दिला रहे हैं कि तुम समझते हो कि ये दोनों बैतुल मक़द्दस की पूजा की तरफ मुंह करते हैं, हालांकि वमा बाद हूँ बिता बिन क़िबलत बाद, ये तो दोनों भी एक किबले की पैरवी नहीं करते। वो कैसे? बज़ाहर दोनों बैतुल मक़द्दस की तरफ मुंह करते थे लेकिन दोनों मुख्तलिफ रुख में करते थे। आप समझिए पहले इस बात को। आप देखना काबा के चारों तरफ तवाफ होता है ना, मुसलमान इधर खड़े हो, इधर हो, इधर हो खड़े हो, यहूद और नसारा दोनों जो हैं बैतुल मक़द्दस की तरफ मुंह तो करते हैं लेकिन दोनों का रुख आपस में एक दूसरे से अपोजिट है। कैसे? जूस जो है ना वो किस तरफ मुंह करते हैं? पीछे बताया था, आपने से किसी को याद है? जी, मशरक की तरफ जूस नहीं करते, जूस कर क्रिश्चियंस जो हैं वो मशरकी सूरत पे करते हैं। आगे सूरत मरियम में इसकी दलील आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कि जब बीबी मरियम को दर्द ज़ै हुआ, इश्क का वक्त आया, तो वो बैतुल मक़द्दस से मशरक की तरफ चली गई। बैतुल लहम वहां एक जगह, क्रिश्चियन असल में बैतुल लहम की तरफ मुंह करते हैं और क्रिश्चियन ज्यूज जो है वो मगरबी सूरत की तरफ करते हैं। वो उधर सखरा एक जगह पत्थर जहां उनके अंबिया कराम की सवारियां बनती थी या कुछ और वजह थी, यानी एक किबले की तरफ होने के बावजूद एक इधर मुंह करके पढ़ते हैं, किधर मुंह करके पढ़ते हैं। मतलब यह है कि बज़ाहर तुम्हें लगता है कि ये दोनों आपस में एक साथ हैं लेकिन ये दोनों भी एक साथ नहीं है। वो हैकले सुलेमानी भी उधर है मगरिब की तरफ जिधर जूस नमाज पढ़ते हैं, और नसारा मशरिक की तरफ पढ़ते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इस गलत फहमी में ना रहें कि ये दोनों आपस में एक है। यही बात आगे सूरत हशर में भी आप पढ़ेंगे कि तख्सबुहुम जमीअन, तुम गुमान करते हो कि ये दोनों ग्रोह एक है, हालांकि कुलूबुहुम शत्ता, इनके दिल तो आपस में फटे हुए हैं। मुराद ये था कि तसल्ली दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें, کہ یہ آپ کی طرف منہ کیوں نہیں کر رہے، آپ کے قبلے کی طرف یہ نہیں آئیں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس آ گیا، تو اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے. لیکن اشارہ نبی کی امت ہے، میں اور آپ، کہ اب آپ کو اپنے دین پہ فارم ہونا چاہیے. اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لیونگ، آپ کی شریعت پوری ہے. ٹھیک ہے، تدریجی دور پہ جب اسلام ابھی آ رہا تھا، کچھ احکامات آپ کو اس دور کے جیوز کے بھی ماننے پڑے، ان کے طریقوں پہ آپ کو چلا دیا گیا، لیکن اب اسلام کی تصویر پوری ہو چکی، اب آپ نے اس کی طرف رہنا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کی زندگی جیسی تھی جیسی تھی، بس اب اگر اس کے بعد میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا اگر ان لوگوں کی طرف ہوا، تو انکم من الظالمین. کتنی بڑی دھمکی امت مسلمہ کے ان لوگوں کو جو اسلام کے آنے کی پیڑیاں اچھال اچھال کے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا قد ان کی طرف ان کے برابر ہو جائے. آیت 147 کو دیکھیے گا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، مراد وہی ہیں جو اس وقت آپ کے یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں. کس کو؟ وہی تین باتیں، نبی کو، قبلے کی تبدیلی کے حکم کو، اور وحی کو. کیا؟ کما یعرفون ابناہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں، اپنے بیٹوں کی طرح ان کو پہچانتے ہیں. ابن سلام ایک جیو تھے، مسلم ہوئے، ان کا ایک قول کتابوں میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے سگے بیٹوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اندر کھاتے عورتوں، لیکن اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں. یہ اشارہ اور یہ مخابرہ بھی ہے، کیونکہ بندہ ہزاروں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جن جیوز علماء نے آپ کو جھٹلایا، شک کی بنیاد پہ نہیں جھٹلایا، تعصب کی بنیاد پہ جھٹلایا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے یہ حق کو چھپاتے ہیں. بات واضح، ان کی کتابوں میں جو باتیں تھی، یہاں فریقن سے کون سا فرقہ مراد ہے؟ ان کے علماء کا گروہ. عام یہود ایسے نہیں ہوں گے، یاد رکھیے، جیسے عام مسلمان سیدھے سادے ہیں نا. آج جتنا مذہبی تعصب ہے، یہ بعض دفعہ دیندار لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور وہیں سے پھر آگے پھیلتا ہے. اسی طرح جیوز کے چند لوگوں کی وجہ سے پورے جیوز کے اوپر بات آتی ہے، حالانکہ سارے ایسے نہیں آج بھی. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دینداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں چھپائیں، جس کی وجہ سے لوگ اس حق سے ہٹے، تو اس کا سارا گناہ ان کے اوپر ہوگا. تم اپنے دل کو یقین رکھو کہ الحق من ربک، حق وہی ہے جب فرمائے. فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کی طرف نہ آئیں. آپ کے دل میں اپنے دین پر اچھی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، قابل عمل ہے. اپنے رسول پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ تمہاری زندگی کو تنگ کرنے نہیں آیا، اور اسی طرح تمہیں اپنے رب کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ایسے حکم نہیں دے گا جو کہ تمہارے فائدے کے نہیں ہیں. سورۃ الاعراف 157 آیت کا ترجمہ آپ نے اپنے نوٹس میں خود لکھنا ہے، جس میں دلیل ملتی ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ اس نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. خیر، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان کا ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انجانے میں نہیں کرتا بلکہ جانتے بوجھتے کرتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیندار کی پکڑ زیادہ ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے وہ حق سے پیچھے ہوتا ہے. کتمانے حق کی سزا ان کو ملے گی. آپ اس میں شک میں نہ آئیں. الحق میں ربی کا، فلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. یہ جو ممترین ہے نا، مریا سے ہے، اس کا روٹ آپ غلط نہ لکھے گا، میم را یا روٹ ہوتا ہے اس کا. شک میں پڑنا، قلق پیدا کرنا، جس کو آپ کے دل میں بے چینی پیدا کرنے والا شک ہے. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ سبحان تعالیٰ آیت 148 میں کیا فرماتے ہیں، وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ، ہر ایک کا ایک وجہ ہے. سچ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دو تین اینگل ہیں. نمبر ایک، ہر مذہب والا کسی نہ کسی کی پوجا کر رہا ہے. کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے تو کوئی بیت المقدس کی طرف کرتا ہے. تم کیا کرو؟ بحثوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، بلکہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی طرف بھاگو، دوڑ لگا دو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جدھر بھی تم سب ہو گئے تم سب کو اللہ جمع کر لے گا. کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کیا بتایا؟ بحثوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو. جب تفرقوں والی باتیں عام ہو رہا تو پھر نیکیوں کی دوڑ کم ہو جاتی ہے. آج بھی امت مسلمہ کو اس میں سبق دیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی فقہی باتوں پہ جھگڑے نہ ڈالو. آج آپ کو ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے جو فرقے ہیں، بنیادی جو مسلمان فرقے ہیں اسلام سے جو نکل گئے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے کیا کوئی فرقے والا یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ اس پہ سی امام کا اختلاف ہے دوسرے سے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانو، پردہ نہ. کبھی آپ نے کبھی سنا؟ اور آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان عالم یا امام ایسی بات کرے گا؟ مسئلے کیا ہے؟ نماز میں ہاتھ اوپر باندھو کہ نیچے باندھو؟ رفع الیدین ایک دفعہ کرو رکعت میں یا تین دفعہ کرو؟ پیچھے پڑھو نہ پڑھو؟ یہ فقہی باتیں. درخت کی جڑ وہ کاٹ دیں گے تو درخت سوکھ جائے گا، ایک ہے اس کی شاخ، تو شاخ کو کاٹ دیں گے درخت کو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت اس کا حسن کم زیادہ ہوگا. تو آج دشمنوں نے مسلمانوں کو جو آپس میں لڑایا ہے نا، وہ عقیدے کی باتوں پہ نہیں لڑایا، فقہ کی باتوں پہ لڑایا. ابھی آپ آتسکانوں سے ٹکرا کے آگے چلیں، انشاءاللہ سورہ مائدہ تک پہنچ کے آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا. آج امت مسلمہ میں جو اختلاف ہوتے ہیں اس میں کس بنیاد کے ہیں؟ بس ہر ایک کو اس کے طریقے سے کام کرنے دو، ایسے جیسے دین کا کام کرنے والے. کوئی ایک اینگل سے کرتا ہے، کوئی دوسرے سے کرتا ہے، ایک نرمی سے بات کرتا ہے، ایک غصے سے کرتا ہے، ایک راگ لگا لگا کے پورے رات کو پورے جلسے میں لوگوں کو جگا دیتا ہے، ایک سافٹ بات کرتا ہے. کرنے دو، لوگوں کے رنگ فرق ہے، فرق ہے. تم جو دوڑ لگاؤ وہ فستا بالکل خیرات ہے. زندگی تھوڑی ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، پتہ نہیں کس لمحے زندگی کی شام ہو جائے. اپنے آپ کو ضائع نہ کرو بحثوں میں، جھگڑوں میں پڑ کر، ایک کو دوسرے کے خلاف کرنے، اس کو ادھر سے کھینچ ادھر کھینچ کی بجائے کام کرو. جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دو، تم وہ کرو، بات ختم ہو گئی. اب یہ مضمون پورا ہوا، قبلہ تبدیل ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا تھا، کیا دو تین سوالات میں خود اٹھاتی ہوں تاکہ اگلی دو آیتیں آپ سمجھ جائیں. کیا یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور صحابہ کے لیے تھا؟ اس سے یہ لگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر منہ کرنے والے جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں یا مکہ سے باہر کے لوگ بھی کریں یا دنیا بھر کے؟ یہ کچھ سوالات تھے جن سب کا جواب اب اگلی آیتوں میں دیا جا رہا ہے، سنیے گا. وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی تو نکلے. تین دفعہ یہ آیت آئے گی اب آگے آپ کے پاس، اس لیے یہاں ون لکھ لیجئے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کون سے سیکھے ہیں؟ واحد کے. اے نبی، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا اپنے چہرے کو بدل پلٹ لیجئے. کدھر؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. تکرار لگ رہی ہے نا، یہ حکم پہلے بھی اوپر گزرا تھا لیکن اب یہاں اس کا سٹائل تھوڑا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سیغوں میں مخاطب کیا گیا کہ آپ جدھر سے بھی نکلیں، بیت اللہ کے اندر ہوں یا بیت اللہ سے باہر ہوں، مکہ شہر میں ہوں یا مکہ سے باہر ہوں، یا دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ چلے جائیں، ہر طرف جہاں بھی ہوں آپ کا منہ بیت اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، آپ اکیلے کا، آپ ادھر منہ کر لے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اشارہ واحد میں کر دیا، بات واضح ہوگی. نمبر ایک، آگے چلے دوسری دفعہ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحرام، پھر اپنے چہرے کو. آگے چلیے. وحیث ما کنتم،
और जहां कहीं तुम सब हो, यहां फर्क क्या है, जमा के सीगे आगे, फवल्लु वुजूहकुम शत्रहू, तो तुम सारे भी फेर लो अपने चेहरों को उसकी तरफ। गोया कि आप देखिए कि एक हुक्म तीन दफा बयान किया गया। क्यों किया गया, बहुत लंबी चौड़ी तफसीरें हैं, लेकिन सारी बातों का खुलासा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नमाज पढ़ेंगे तो भी बैतुल्ला की तरफ मुंह करेंगे, सहाबा साथ पढ़ेंगे तो सहाबे कराम भी उस तरफ मुंह पड़े करेंगे, तीसरी बात मस्जिद हराम की इमारत के अंदर, जो बैतुल्ला जिसको आप कहते हैं, मस्जिद हराम को हराम कहने की वजह भी है कि यहाँ कुछ चीजें हराम है जो बाहर हलाल है, इसके ऊपर कल बात कर दूंगी इंशाल्लाह थोड़ी सी अगर आप चाहेंगे तो, बैतुल्ला की हदूद के मौजूद है तो भी मुंह किबले की तरफ होगा, बैतुल्ला की हद से निकले जद्दा आ गए या समझे मक्का की हद के अंदर आ गए, यानी बैतुल्ला दिख नहीं रहा लेकिन मक्का में रहते हैं तो भी इधर ही मुंह करेंगे, और तीसरा यह है कि बैतुल्ला से भी निकले मक्का यानी तनीम की हद से भी निकल गए तो दुनिया का बाहर लंदन, अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जिधर भी होंगे सब के मुंह इधर ही होंगे, ये मुराद है। सफर में, हजर में, फर्ज नमाज में, नफिल नमाज में, जनाजे की नमाज, सलातुल इस्तस्ले की तरफ होगा, ये मुराद है तकरार से। क्यों, इसकी वजह फरमाया ली अल्लाह यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। ये कौन लोग है, यहूद। अब यहां आप अपने ज़हन को तेज तेज चलाएंगे तो समझ आ जाएगी कि यहूद को गुस्सा तो आ रहा है किबले की तब्दीली के ऊपर, लेकिन उनके दिल गवाही दे रहे हैं ना कि ये सच्चा है, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किबले की तब्दीली का हुक्म इसलिए दिया है कि यहूद को आपके खिलाफ ये हुज्जत ना मिले कि जी इनको तो बैतुल्ला की तरफ मुंह करना था, ये तो बैतुल मकदस की तरफ कर रहे हैं। कितनों को ये बात समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी किबले की तब्दीली यहूद का मुंह बंद कर रही है कि ये नबी सच्चा है, तभी तो इनको ये हुक्म दिया गया। अब आप कहेंगे इतनी तकरार, इधर मुंह कर लो वो कर लो, क्या बड़ी बात थी। तो यहां नोट कीजिएगा कि नसख यानी एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म लाना, नासिख और मंसूर जिसको पीछे पड़ चुके, ये उसका पहला मौका था। किताब में तो आ गया था हुक्म कि हम कुछ हुक्मों को बदल देते हैं, कुछ को छोड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नबी सल्लम की जिंदगी में ये पहली थी। और जब एक चीज भी रखी जाती है ना तो शोर उठता है। जैसे आप इधर हैं, कल से हम कहें कि ऐसा करते हैं कि क्लास उधर कर लेते हैं तो शोर उठेगा ना। तब्दीली यही इशारा इसमें, हाँ मगर इल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, मगर कुछ लोग ऐसे जालिम हैं, यानी वो इस निशानी को देख के भी खुश नहीं है, हालांकि ये निशानी पॉजिटिव वे में करें क्या, फला तख्शो हूं, आप उनसे मत डरिए, वख्शो नहीं मुझसे डरिए, क्यों, वाली उतिम नेमती अलैकुम, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूं। क्या नेमत थी दे पूरी होनी, किबले की तब्दीली। किबले की तब्दीली के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेमत इस्लाम पूरी हुई, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी। लोगों का डर, किन लोगों का डर, वो रिएक्शन का डर जो सयकूल उस्सुफहाउ मिनन नास में आ गया, यानी पीयर प्रेशर में आकर आप किबला वापस दूसरी तरफ ना कर लें, ये मुराद है। मेरा खौफ रखे, मेरी तरफ रहे, जिस तरह मैंने आज किबले की तब्दीली का हुक्म आप पे साबित कर दिया, इसी तरह यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन भी आप पे पूरा करूंगा, वक्त के साथ वो सारी नेमते उम्मत मुहम्मदी आपको मिलती जाएंगी जो कल तक दूसरों को मिली थी, और वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पाओ, हिदायत पे हो। यकीन करें ये तर्जमे के एतबार से मुश्किल तरीन आयतें हैं सूरह बकरा की, आगे भी एक आएगी आयत बड़ी मुश्किल है। अगर आप साथ साथ इस आयत को एंजॉय नहीं कर रहे तो आप लॉस्ट हैं, अभी लॉस्ट होंगे, घर जाके दोबारा पढ़ेंगे समझेंगे, ये तफसीर के वक्त आयतों पर नजर रखेंगे तो समझ आ जाएंगी, वरना तर्जमा कहीं पड़ा होगा, तफसीर कहीं होगी और आपको मजमून समझ आ चुका होगा। तो यहाँ क्या बात बता दी कि लोगों के डर की बजाय बात जो है वो अल्लाह की मानो। हम सब के लिए भी इसमें यही सबक है कि अल्लाह का कोई हुक्म मानकर लोग हमसे खुश हैं कि नहीं, तारीफ करें कि तनकीद करें, छोड़ें या अपनाएं, सब बराबर है।
چلتے جائیے، اللہ کی نعمت اسلام، نعمت ہدایت آپ پہ پوری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو صبغت اللہ کے اندر اس طرح سے جما دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ سب کچھ ہو گیا. اب یہ قبلے کی تبدیلی پوری ہوئی، امت مسلمہ کو ایک کارنر ملا، امت وسط بنی، تو اللہ تعالیٰ آخر میں ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے آپ کے درمیان ایک رسول بھیجا. اب میرا سوال ہے آپ سے، کما سے کیا مراد ہے؟ پیچھے بھی تو کما کہا نا، کما ارسلنا فیکم رسولا منہم. یہاں کما سے مراد قبلے کی تبدیلی ہے، کہ لوگوں قبلے کی تبدیلی جو تمہیں حکم دیا، یہ کوئی پہلا احسان نہیں کیا امت مسلمہ پہ، اس سے پہلے ایک اور احسان بھی تو کر چکا، اور وہ کیا؟ کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے تم پر ایک، تمہارے اندر ایک رسول بھی تو بھیجا. کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. آپ کو یہ الفاظ پڑھ کر کوئی یاد آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بالکل ٹھیک. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، 4000 سال پہلے کی مانگی ہوئی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے امت محمدیہ، تم پر ایک احسان میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور وہ کیا؟ کہ دعائے خلیل کو پورا کیا، اور تمہارے پاس عربوں میں تمہارے پاس ہی ایک رسول بھیج دیا. یہی آیت آپ آگے سورہ صف میں بھی پڑھیں گے، سورہ توبہ میں بھی پڑھیں گے، غالباً سورہ جمعہ میں بھی پڑھیں گے. کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک لیڈر دیا. یاد رکھیے کہ رسول کا آنا، ایک لیڈر کا ملنا ایک قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے. قبلے کی تبدیلی کون بتائے گا؟ لیڈر بتائے گا نا. آپ یہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استاد سمجھیں، پریکٹیکلی وہ سارے کام کر کے دکھا رہے تھے نا جو کتاب میں لکھے تھے. آپ سوچئے کہ کتاب اتر جاتی جبرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ ہر گھر میں مکہ میں پہنچ جاتے، اس کے نسخے کتنے لوگ پڑھتے؟ یہ ممکن ہی نہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے استاد خود موجود ہو نا، تو کوئی بات کہے تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بات کنوے کروا دی جائے یا لکھی بھی دے جائے تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو طریقہ ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ یہاں ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور وہ کیا؟ کہ امت مسلمہ ہم نے تم کو ایک رسول دیا. اچھا یہ مزے کی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا بھی ہے. سورۃ آل عمران آیت 164 میں آپ پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان میں ہی ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کی آیات ان کو سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ کہ ایک بندے کو کتاب مل جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن کتاب پڑھانے والا ملے یہ اس سے بڑی نعمت ہے. رسول انسان کو یہ بھی بتا دیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، نیکی کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، رسول کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. آج لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، الہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ پتھر کا بت الہ ہے؟ پیپل کا پتا الہ ہے؟ کس نے بتایا؟ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، رسول کے ذریعے پتا چلا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا بڑا مل جائے کہ جو اس کو یہ سب کچھ سکھائے. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو ابھی آپ نوٹ نہیں کریں گے لیکن آپ لکھ لیجئے تو بعد میں جا کے دیکھیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی نا تو ترتیب فرق تھی، ڈھونڈ کے آئیے گا. یہاں کیا بات ہے؟ یزکیہم کو پہلے کر دیا یتلو علیہم آیاتہ کے بعد. وہاں کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، فرق ہے دونوں میں. ترتیب کو دیکھیں تو یہاں آیتوں کا پڑھنا یعنی صرف تلاوت کرنے کے ساتھ ہی تزکیے کا عمل شروع ہو گیا، جبکہ ابراہیم نے کہا تھا کہ پہلے وہ ان کو قرآن پڑھنا سکھائے، ان کی تجوید ٹھیک کرے، پھر ان کو قرآن کی تعلیم دے یعنی تفسیر کروائے، پھر حکمت یعنی حدیث سکھائے، پھر ان کا تزکیہ کرے. وہ ابراہیم کی دعا تھی. اللہ نے اس دعا کو کریکٹ کیا کہ نہیں, یہ سارے سفر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کے ساتھ سے بھی پہلے تزکیے کا عمل شروع ہو جائے گا. یعنی اس میں باریک بات ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے, قرآن کے ہاتھ میں آنے سے ہی تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ بالکل ایک پودے کی طرح, اس پہ ایک لیکچر ہماری پوری سیریز ہے پیوریفیکیشن آف سول, آپ اس کا انٹروڈکٹری لیکچر سن لیں, بہت کچھ اس میں ملے گا کہ جیسے پودے اگتے ہیں نا اسی طرح تزکیہ کا عمل ہوتا ہے. کچھ چیزیں اچھی آتی ہیں اور ساتھ ساتھ بری بری چیزیں نکالنی ہوتی ہیں. تزکیہ ڈیول ایکشن ہے, اچھی چیزوں کو اپنے اندر لانا اور بری عادات کو نکالنا. یہاں آپ قرآن پڑھتے رہے سارا چار گھنٹے اور رات کو آپ گندی چیزیں دیکھتے رہے تو تزکیہ نہیں ہوگا. اچھی چیزیں لائیں گے اور بری چیزیں نکالیں گے تو تزکیہ ہوگا. سب سے پہلے سوچ کا تزکیہ ہوتا ہے, بندے کی سوچ بدلتی ہے, گناہ اور نیکی کا فرق پتا چلتا ہے. یہاں آنے سے پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ, اوہ اچھا اٹس سین, ہمیں تو نہیں پتا تھا. آہستہ آہستہ آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی گناہ یہ بھی غلط, بس تزکیہ شروع ہو گیا. قرآن پڑھنے کے دوران جو علم الکتاب والحکمہ میں آخر میں آپ دیکھیں گے کہ نظر کا تزکیہ, آنکھوں کا تزکیہ, زبان کا, ہاتھوں کا, حتیٰ کہ بندے کو پھر خوف آتا ہے کسی غلط چیز کی طرف دیکھتے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے پہلے گمراہیوں میں تھے تو اب شکر کریں کہ اللہ نے ان کا راستہ کھول دیا. اور اس پہ اس آیت پہ آگے جا کے بہت دفعہ بات ہونی ہے, اس لیے ہم اس پہ اتنی بات کر کے آخری آیت پہ آتے ہیں. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس تم مجھ کو یاد رکھو, میرا ذکر کرو میں تم کو یاد رکھوں گا. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرا شکر ادا کرو اور میرا کفر نہ کرو. یہ فا کیا ہے, بڑی بات ہے اس میں. اگر آپ اس کو لکھیے فا پلس اذکرونی یا اذکرونی, تو فا کا معنی ہے تو, عطف کی وا ہے, جیسے اور ہوتا ہے نا واو کی صورت میں, اور تم مجھ کو یاد کرو, یہ مطلب ہے. تو کیا مطلب ہے, فا سے مراد کیا ہے؟ چاروں کام کرو, قرآن کی تعلیم, علم, یہ سب کچھ چار کام جو آپ نے نبی کی صورت میں یہاں دیکھ لیے, جس میں کتاب کی تلاوت, تزکیہ, تعلیم اور حکمت, یہ چار کام کر کے فرض کرو نی پھر مجھ کو یاد کرو. یہاں آپ کو ذکر اور تذکر اذکار کرنے کا ایک نیا اینگل سمجھایا جا رہا ہے کہ جس نے یہ چار کام کر لیے پھر اللہ اس کو یاد کرے گا. ہمارے یہاں ذکر کا قومی طور پہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ اللہ اللہ, اندھیرے کے سامنے رکھ کے ہاتھ اس میں ڈبو کے اور ذکر کرو. دیکھیے اگر تو اللہ کے نبی نے یہ کیا تو بہت اچھی بات ہے. اور طریقہ کیا دیکھا گیا؟ اندھیرے کر دو, شمع گل کر دو اور اندھیرے میں وجد میں آ جاؤ. یہاں سے آپ کو ذکر کا اصل طریقہ پتا چلا کہ ذکر کی یہ چار قسمیں ہیں. کون سی؟ قرآن کا پڑھنا, قرآن کا سمجھنا, اس کے ساتھ روشنی میں اپنا تزکیہ کرنا, اور ساتھ ساتھ حدیث کا علم. یہ ہے ذکر. قرآن کو ذکر کہا گیا, اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, سورہ ہجر کی آیت غالباً, اگر میں غلطی نہ کھاؤں, کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو کرنے والے ہیں. تو گویا کہ یہاں بتا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اتنی بڑی بات ہے, خاکی ذرے کو اللہ اپنے برابر لا رہا ہے. تم مجھے یاد کرو میں تم کو کروں گا. ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. دوسروں نے کہا بھائی یہ کیسے, تم اتنے پہنچے ہوئے ہو کہ تمہیں پتا میں اس کو یاد کرتا ہوں. میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے. اطاعت کے معنوں میں دیکھیے ذکر کے مختلف درجے ہیں, لکھ لیجئے, صرف نام لکھنے, کل انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو بات کریں گے. ذکر کا معنی قرآن پاک میں اطاعت کے معنوں میں آیا, تم میری اطاعت کرو میں تمہاری اطاعت بات مانوں گا, یعنی تم میرے دین کے اوپر عمل کرو. دوسرا ذکر ہوتا ہے ذکر باللسان, زبان سے ذکر کرنا, سورۃ الاعراف آیت 205 میں آتا ہے. تیسرا آتا ہے ذکر بالقلب, دل سے ذکر کرنا, سورۃ آل عمران آیت 135 ہے, ترجمہ آپ خود لکھیے گا جا کے. چوتھا ذکر ہے کمانی تذکرہ, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا آپ تذکرہ ہو رہا تھا, اس کی دلیل سورۃ مریم آیت 41 میں, نوٹ کیجئے گا جا کے. پانچواں حفظ, کسی چیز کو حفظ کرنا, نگہبانی, حفاظت کے معنوں میں, سورۃ الاعراف آیت 171 اس میں اس کی دلیل ہے.
چھٹا لفظ ذکر نصیحت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سورت قاف آیت 45 اس کی دلیل ہے. پھر ساتواں ہے ذکر بامانی شرف عزت کے معنوں میں, شرف دیا آپ کو عزت دی, سورت الانبیاء آیت 10 اس کی دلیل ہے. بلکہ سورت الانبیاء کی چیک کر لیجیے گا آیت نمبر 10 یہ خوب کھلی جی. ذکر بمانی خبر اطلاع دینے کے معنوں میں سورت کہف آیت 83. ذکر بمانی وحی, وحی کے معنوں میں یہ نواں معنی ہے اور اس کا ریفرنس سورت صافات آیت 3 میں. اور ذکر بمانی قرآن سورت الانبیاء آیت 50. اور ذکر بمانی صلات نماز کے معنوں میں سورت طہٰ آیت نمبر 14 اور سورت نور آیت نمبر 37. اب بتائیے ذرا کتنے معنی ذکر کے آپ نے نوٹ کیے؟ 11. آپ سب اس کو ذکر کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ذکر اذکار کیا ہے, تسبیح پہ ہاتھ پہ رکھنا. تو ان سب کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. فرمائے وشکرو لی اور میرا شکر کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کس بات پہ, کس بات پہ شکر کرو ٹیکسٹ کے اعتبار سے؟ ایسے تو ہر بات پہ شکر, یہاں شکر کس بات کا کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں انسان بنایا, اللہ کی مرضی سکھائی, ہمیں نفس کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈالا, نیکی کب کرنی, کتنی کرنی, کیا کرنی, یہ سب سکھا دیا. اس بات پہ شکر کرو کہ جس نے ہمیں ہوا سے نکال کر ہدن کی طرف ڈال دیا. ہم تو کئی ایسے کام کر رہے تھے ثواب کے طور پہ جن کو اللہ جانتا بھی نہیں, حالانکہ ثواب وہ کام ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ راضی ہو, گناہ وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. تو گویا کہ اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا. ہم سب بھی قرآن کی اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر کریں گے ہماری نعمت بڑھے گی. میں آپ سب کو ایک نصیحت کروں گی, دن رات کا کوئی وقت چوز کر کے جب بالکل آپ فوکس ہو, اکیلے ہو, چاہے گاڑی میں جاتے ہوئے راستے میں یا بستر پہ رات کو لیٹے کھانا کھاتے ہوئے, پورے دل اور دماغ سے جتنی دفعہ بغیر گنے, کوئی وظیفہ نہیں باندھ رہی, لیکن آپ نے اس قرآن کی نعمت کو ذہن میں رکھ کے الحمدللہ الحمدللہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل ابراہیم میں کہتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں نعمت بڑھاؤں گا, اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم کفر کرو گے نہ شکری کرو عذاب بہت شدید ہے. وَلَا تَكْفُرُونِ, میری نہ شکریہ نہ کرو, نہ شکریہ کہ اس نعمت کو چھوڑ کر انسان اس سے کمزور اور حقیر چیزوں کے پیچھے لگ جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق, ایک قسم کا ہم نے اس کو ایک ربط میں رکھا ہے. کچھ چیزیں اس کی سائٹس کی ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے ڈسکشن میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہم سب کے دل میں بیٹھ جائیں. آپ سچ بتائیں کہ یہ باتیں جو ابھی اشارتاً ہی سامنے آئی ہیں کبھی ہم نے عام طور پہ چلتے پھرتے سنی؟ اگر آج یہ قرآن سامنے نہ کھلا ہوتا تو کیا آپ فوکس کر پاتے؟ یہ ہے نعمت جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو. میرا کوئی بات, سوال, کوئی بات جو آپ کے دل کی ہے شیئر کیجیے پلیز. جی, ان کا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آئی تھی جس کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا اور آپ نے رخ چینج کیا, تو صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ فتبعونی, اتباع رسول. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, ساتھ پڑھ رہے تھے, اور جو ہی آپ نے رخ پھیرا انہوں نے رخ پھیرا. صرف عمل کرتا دیکھ کر آپ نے مانا. پھر وہاں سے ایک صحابی اٹھے, وہ سفر میں تھے اس وقت, وہاں سے 2-3 میل دور ایک اور بستی میں گئے تو وہاں پہ بھی نماز چل رہی تھی. انہوں نے وہاں نماز کے دوران ہی آواز دی لوگوں کو کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی بیت اللہ کی طرف مکر کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو اس بات کو سن کر اس مسجد والوں نے اپنے رخ کو پلٹ کر بیت اللہ کی طرف کر لیا. کیا خوبصورت گروہ تھا. دعا کیجیے ہمارے دل ایسے بن جائیں. ہم تو بھی دلائل ہی مانگ رہے ہوتے, فتوے پوچھتے, کوئی ہے عالم جو کہہ دے کہ یہ جائز ہے, کوئی کہہ دے یہ ناجائز ہے, تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. لکھیے اپنے کمنٹس. جی,
کہ جیسے قبلے کی آج قبلے کی تبدیلی آپ کو نہیں, مسلمانوں کو خوشی ہوئی تھی بیسیکلی قبلے کے تبدیل ہونے پہ نا, جو سچے مسلمان تھے, کیونکہ بیت اللہ کی طرف مکرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نعمت کا احساس دلا رہے ہیں کہ کما ارسلنا, جو تم پر ایک احسان کیا ہے, اسی طرح کا ایک احسان پہلے ایک رسول کو بھیج کے تم پر کر چکا تھا. ٹھیک ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو یہاں ایک نعمت کے طور پہ پیش کیا گیا کہ یہ کوئی پہلا احسان نہیں تم پہ کیا, بلکہ اس سے پہلے ایک اور احسان نبی کی صورت میں تم پر کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. دیکھ لیجئے اب میں تو پوری دوڑ لگاتی ہوں, میرا نہیں خیال کہ ہاں میں جتنی تیزی سے بولتی ہوں اتنا تیز میں کبھی پہلے بولتی ہوں, لیکن وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے ہمارا وقت اوپر جاتا ہے. اس کے لیے آپ لوگ سنجیدگی سے سوچیں کوئی بات, اگر آپ نعمت بڑھانا چاہتے ہیں. میں نہیں منہ سے کچھ کہوں گی, میں آپ کے منہ سے سنوں گی, آپ جو چاہیں وہ کریں, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو اور شارٹ ٹرم کرنا ہے تو ہم بھی کچھ اور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کے منہ سے نکلے گا, ہمارے منہ سے نہیں نکلے گا کہ آپ کیسے چاہتے ہیں ہمیں سجیشنز دیں, مشورے دیں کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کریں. اور ابھی مجھے پتا ہے کہ پیچھے بہت کچھ رہ رہا ہے. جی جی, آپ پلیز آپ دے دیجیے, آپ آزاد ہیں, آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ بریک میں دیکھیے گا آپ کے پاس کتنے لوگ آئیں گے آپ کو ڈانٹنے. ٹھیک ہے, آپس میں نبٹ لیں, مجھے ریٹرن فارم میں چاہیے جو بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں. اور اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ لوگ اس وقت میرے دل کا حال نہیں جانتے جب میں پڑھا کے اٹھتی ہوں, یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ اس وقت اس طرح سے بھرا ہوا ہے کہ میرے سے کوئی بات بھی نہ کرے. یقین کریں اتنا ایک اللہ کے کلام کا بندے کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے نا. اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق بات ہماری زبانوں سے نکالے. بریک انجوائے کریں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر تجوید ہوگی. جی آن لائن پہ بھی جزاک اللہ خیر, آپ لوگ شیئرنگ کیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے کمنٹس بھیجئے, انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کریں گے. السلام علیکم.